آگے سبق دیکھیے بھائی. قال وَإِذَا تَزَوَّجَتِ الْمَرْأَةُ وَنَقَصَتْ عَنْ مَهْرِ مِثْلِهَا فَلِلْأَوْلِيَاءِ الْإِعْتِرَاضُ عَلَيْهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ حَتَّى يُتِمَّ لَهَا مَهْرَ مِثْلِهَا أَوْ يُفَارِقَهَا وَقَالَ لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ وَهَذَا الْوَزْعُ إِنَّمَا يَصِحُّ عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى اعْتِبَارِ قَوْلِهِ الْمَرْجُوعِ إِلَيْهِ فِي النِّكَاحِ بِغَيْرِ الْوَلِيِّ. گزشتہ سبق میں کفاعت کا بیان چل رہا تھا. صاحب ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ نکاح کے اندر کفاعت معتبر ہے. شریعت نے کفاعت کا یعنی برابری کا اعتبار کیا ہے, اور میں نے بتلایا تھا کہ یہ کفاعت مرد کی طرف سے ہونی چاہیے, عورت کے اندر کفاعت معتبر نہیں. بھائی وجہ یہ کہ ایک تو حدیث کے اندر آیا ہے کہ عورتوں کا نکاح اکفا سے کروایا جائے بھائی, اور دوسرا اس لیے کیونکہ نکاح کی مصلحتیں تبھی حاصل ہوں گی جب خاوند اور بیوی ہم پلہ ہوں گے اور برابر کے ہوں گے, کیونکہ شریف اور معزز عورت جو ہے وہ پسند نہیں کرتی کہ وہ مستفرشہ بنے ادنا اور گھٹیا آدمی کے لیے. یعنی معزز عورت یہ پسند نہیں کرتی کہ وہ ادنا آدمی کی حاکمیت کے تحت ساری زندگی گزارے بھائی. تو لہذا عورت کا نکاح کروایا جائے تو کفاعت کا خیال رکھنا چاہیے, اور نیز عورت کو بھی شریعت نے نکاح کی اجازت دی ہے. عند الاحناف عاقلہ بالغہ خود اپنا نکاح کر سکتی ہے, لیکن ضروری ہے کہ وہ بھی کفاعت کا خیال رکھے. وجہ یہ کہ وہ ادنا خاندان کے اندر اگر نکاح کرے گی تو یہ اس کے عصبات کے لیے یعنی اس کے خاندان والوں کے لیے عار اور طعنے کا باعث بنے گا, اس سے اس کے اولیاء کو بے انتہا تکلیف ہوگی. لہذا اگر وہ عورت اپنے ہم پلہ لوگوں میں نکاح کرے گی اپنی مرضی سے تو وہ نکاح منعقد ہو جائے گا. اولیاء چاہے راضی ہوں یا راضی نہ ہوں, خوش ہوں یا ناراض ہوں, لیکن جب اس نے کف کے اندر اپنا نکاح کیا ہے وہ نکاح منعقد ہو جائے گا. لیکن اگر اس نے کسی غیر کف کے اندر عورت نے نکاح کر لیا تو پھر اس کے اندر آپ نے پڑھا کہ دو روایتیں ہیں. ظاہر روایت تو یہ ہے کہ یہ نکاح ہو جائے گا, البتہ اولیاء کو اعتراض کا حق ہے, وہ قاضی کے پاس جا کر جدائی کروا سکتے ہیں. لیکن میں نے بتلایا کہ فتویٰ امام صاحب کے دوسرے قول پر ہے. امام صاحب کے نزدیک اگر عورت غیر کف میں اپنا نکاح کرے گی وہ تو وہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا بھائی. اور پھر کفاعت کن کن چیزوں میں معتبر ہے صاحب ہدایہ نے بیان فرمایا, بتلایا کہ ایک تو نسب کے اندر کفاعت ہونی چاہیے. یعنی عورت جہاں نکاح کر رہی ہے یا جہاں اس کا نکاح کروایا جا رہا ہے وہ اس کے ہم پلہ اور برابر کے خاندان کا ہونا چاہیے وہ مرد بھائی. اور صاحب ہدایہ نے بتلایا کہ قریش سب ایک دوسرے کے کف ہیں, اور اسی طرح عرب جو ہیں وہ ایک دوسرے کے کف ہیں بھائی, اور اسی طرح عجمی جو ہیں وہ ایک دوسرے کے کف ہیں. یہ سب حدیث میں آتا ہے. پھر صاحب ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ قریش کے اندر بہت سے قبیلے ہیں اور وہ آپس میں ایک دوسرے پر برتری کا دعویٰ کرتے ہیں. ہر قریشی قبیلے والا کہتا ہے ہمارا خاندان زیادہ اعلیٰ ہے, ہمارا قبیلہ زیادہ اعلیٰ ہے, کیونکہ قریش بہت بڑا قبیلہ ہے اور اس کے اندر چھوٹے چھوٹے بہت سے قبیلے شامل ہیں بھائی. تو قریشی آپس میں ایک دوسرے پر برتری کا دعویٰ کرتے ہیں, کہتے ہیں نہیں یہ برتری کا دعویٰ معتبر نہیں. وجہ یہ کہ حدیث سے پتا چل گیا کہ قریش سب ایک دوسرے کے کوف ہیں بھائی. البتہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر قریش کے اندر کوئی نسب زیادہ مشہور ہو جائے جیسے خلیفہ کی اولاد وغیرہ ہے تو وہاں تفاضل معتبر ہے, وہاں تفاضل معتبر ہے جب زیادہ شہرت ہو جائے کسی نسب کی جیسے کہ خلیفہ کی اولاد ہے. اس پر اشکال ہوتا ہے کہ حدیث میں تو آیا سب قریشی ایک دوسرے کے کف ہیں, تو امام محمد رحمہ اللہ کیسے حدیث کی مخالفت کر سکتے ہیں؟ تو صاحب ہدایہ نے جواب دیا کہ امام محمد رحمہ اللہ حدیث کی مخالفت نہیں فرما رہے. تو ان کے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں اصل کفاعت ہی نہیں ہے, کیونکہ کفاعت تو موجود ہے, وہ تو حدیث سے ثابت ہو چکی ہے, حدیث میں اس کا ذکر آ چکا ہے. وہ جو امام محمد رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا وہ صرف خلافت کی تعظیم کے طور پر اور فتنے کے دروازے کو بند کرنے کے لیے فرمایا. وجہ یہ کہ خلیفہ کی جو اولاد ہے وہ قریشی ہیں مثلا اور دوسرے بھی قریشی ہیں تو خلیفہ کی اولاد یقیناً اپنے آپ کو اعلیٰ و برتر جو ہے وہ خیال کریں گے اور اس کا دعویٰ کریں گے. اب اگر ان کے خلیفہ کی اولاد میں سے کوئی عورت وہ کسی اور قریشی نوجوان سے نکاح کر لے, اب اگرچہ یہ اس کا کفر ہے حدیث کی روح سے, لیکن اگر کسی مفتی سے پوچھا جائے اور وہ مفتی جواب دے کہ نہیں اولیاء کچھ بھی نہیں کر سکتے اس نے اپنے کفر کے اندر نکاح کیا ہے, تو وہ مفتی کے لیے بھی مصیبت بن جائے گی کیونکہ خلیفہ کی اولاد یقیناً وہ طاقتور لوگ ہیں, وہ کوئی نہ کوئی فتنہ کھڑا کریں گے بھائی. یا وہ جو نوجوان ہے جس نے نکاح کیا ہے اس عورت سے اس کے لیے فتنہ بن جائے گا بھائی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو امام محمد رحمہ اللہ نے اس وجہ سے فرمایا کہ اگر نسب مشہور ہو تو وہاں تفاضل معتبر ہے تاکہ فتنے کا دروازہ بند ہو جائے بھائی. اور پھر اس کے بعد صاحب ہدایہ نے بتلایا عربوں کے اندر تو نسب میں کفاعت ہوگی لیکن عجمیوں کے اندر کہتے ہیں اسلام کے اندر کفاعت معتبر ہے, تو لہذا عجمیوں کے ہاں اسلام جو ہے اس میں کفاعت دیکھی جائے گی, اور اسلام میں کفاعت جو ہے صرف دادا تک معتبر ہے, یعنی ایک آدمی ہے اس کا باپ اور دادا دونوں مسلمان گزرے ہیں تو دو اب اس کے اسلام کے اندر گزرے اور دادا تک ہی کفاعت معتبر ہے, لہذا یہ اب اگر ایک ایسی عورت سے نکاح کرتا ہے جس کے اوپر کئی آبا اسلام کے اندر گزرے ہیں تو ہم کہیں گے کہ یہ مرد اس عورت کا کفو ہے بھائی. اسی طرح حریت یعنی آزادی کے اندر بھی کفاعت معتبر ہے, اور جیسے اسلام کے اندر کفاعت صرف دادا تک معتبر تھی اسی طرح حریت اور آزادی میں بھی کفاعت صرف دادا تک معتبر ہے بھائی. اور پھر صاحب ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ دینداری کے اندر بھی کفاعت معتبر ہے, جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دینداری میں کفاعت معتبر نہیں کیونکہ دینداری جو ہے یہ امور آخرت میں سے ہے, اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے, لہذا دنیاوی معاملات میں اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. ہاں اگر کوئی شخص فسق و فجور میں اور گناہوں میں اس حد تک پہنچ جائے کہ تمام لوگ اس سے مذاق کرتے ہیں, جہاں جاتا ہے بچے اس کے ساتھ مذاق کرتے ہیں, کوئی اس کو تھپڑ وغیرہ لگاتا ہے, کوئی ہنستا ہے, کوئی تالیاں بجاتا ہے اس کے لیے, تو پھر اس صورت میں یہاں دینداری میں کفاعت کا اعتبار کیا جائے گا, یہ شخص جو ہے دیندار عورت کا کف نہیں ہو سکتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور پھر یہ بھی بتلایا کہ مال کے اندر بھی کفاعت معتبر ہے, اور مال کتنا ہونا چاہیے کہ وہ شخص نفقہ ادا کر سکے بیوی کا اور مہر ادا کر سکے, اور مہر سے بھی سارا مہر نہیں مراد بلکہ وہ مقدار مراد ہے جو پہلی رات عموماً بیوی کو تحفے کے طور پر دی جاتی ہے بھائی. اور پھر اس کے بعد بتلایا کہ پیشوں کے اندر کفاعت معتبر ہے یا نہیں, اس سلسلے میں دو قول ہیں بھائی امام صاحب کے. ایک قول کے مطابق پیشوں کے اندر کفاعت معتبر ہے بھائی, اس لیے کیونکہ لوگ جو ہیں پیشوں پر فخر کرتے ہیں, اور دوسرے قول کے مطابق پیشوں کے اندر کفاعت معتبر نہیں ہے, وجہ یہ کہ کیونکہ پیشہ انسان کے ساتھ لازم نہیں ہوتا, کسی بھی وقت وہ ایک پیشہ چھوڑ کر دوسرا پیشہ شروع کر سکتا ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آئیے آج کے سبق پر. قال وإذا تزوجت المرأة ونقصت عن مهر مثلها فللأولياء الاعتراض عليها. صورت مسئلہ یہ کہ ایک عورت نے نکاح کیا اپنی مرضی سے اولیاء کی اجازت کے بغیر, اور اس نے اپنا مہر مہر مثل سے بہت کم رکھا. مہر مثل یعنی اس جیسی عورتوں کا جو مہر ہونا چاہیے, اس کے خاندان میں اس جیسی عورتوں کا جو مہر ہوتا ہے اس سے بہت کم مہر مقرر کیا, تو اس صورت میں یہ آزاد عاقلہ بالغہ ہے, یہ اپنی مرضی سے نکاح تو کر سکتی ہے, اور نکاح بھی کہاں کرے گی؟ کف میں کرے گی. اور نیز مہر بھی کتنا ہونا چاہیے؟ مہر مثل ہونا چاہیے, اس سے کم نہیں. تو اس نے بہت کم مہر کے اندر ایک برابر والے ہم پلہ شخص کے ساتھ نکاح کر لیا, تو کہتے ہیں اولیاء کو اعتراض کا حق حاصل ہے, وہ قاضی کے پاس جا کر مقدمہ کر سکتے ہیں. تو پھر قاضی خاوند سے کہے گا یا تو اس عورت کا مہر بڑھا کر کم از کم مہر مثل جتنا کرو, یا اس عورت کو چھوڑ دے, اس سے جدائی کروا دے گا قاضی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں قال وإذا تزوجت المرأة ونقصت عن مہر مثلها, اور جب نکاح کر لیا کسی عورت نے, ونقصت عن مہر مثلها, اور اپنے مہر مثل سے کمی کر دی, महरे मिसल से, भाई देखो महरे मिसल कोई मुकर्रर नहीं होता कि बियाइन ही मसलन 2 लाख इसका महर होगा, नहीं, यानी उसके करीब करीब क्या है, करीब करीब यानी इस जैसी औरतों का महर तकरीबन 2 लाख के करीब करीब होता है, और ये औरत मसलन 1 लाख महर के अंदर निकाह कर रही है, भाई थोड़ा बहुत फर्क हो वो तो आ जाता है, लेकिन इतना फर्क नहीं होना चाहिए, तो इसने बहुत ज्यादा कम महर रखा है, तो अब अवलिया को एतराज का हक हासिल है। तो ये माना है वह इदा तज़व्वजतिल मरअतु व नक़सत अन महरि मिस्लिहा, और जब निकाह कर लिए किसी औरत ने और महरे मिसल से कमी कर दी अपने महर में, फलिल औलिया इलेअतिराज़ु अलैहा इंद अबी हनीफा रहमहुल्लाह, तो अवलिया को उस पर एतराज का हक हासिल है इमाम साहिब के नजदीक, हत्ता युतिम्मलहा महर मिस्लिहा औ युफारिकहा, यहां तक कि खावंद उसके लिए महरे मिसल को पूरा कर दे, खावन महर को बढ़ाकर कितना कर दे, महरे मिसल के बराबर कर दे, औ युफारिकहा या इससे जुदा हो जाए। भाई वकाला साहिबैन कहते हैं लैसा लहुम जालिका, के औलिया को यह हक नहीं है, भाई औरत ने अपनी मर्जी से निकाह किया है, अगर उसने अपना महर कम मुकर्रर किया है, साहिबैन कहते हैं औलिया एतराज नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई, तो कहते हैं वकाला और साहिबैन फरमाते हैं लैसा लहुम जालिका, कि औलिया को इस बात का हक नहीं है, वहादल वज़ इन्नमा यसिहु अला कौली मुहम्मदिन रहिमहुल्लाहु तआला अला इतिबारि कौलिहिल मरजूई इलैहि फिन निकाह बिगैरिल वली। भाई देखो साहिब हिदाया ने आपको बतलाया कि इमाम साहिब के नजदीक अगर औरत महरे मिसल से बहुत कम महर अपना मुकरर करेगी तो औलिया एतराज कर सकते हैं, और साहिबैन क्या फरमाते हैं कि औलिया एतराज नहीं कर सकते। आप देखो साहिबैन दोनों एक तरफ हैं, मालूम है साहिबैन के नजदीक निकाह मुनाकिद हो गया है और औलिया एतराज नहीं कर सकते, जबकि पीछे जहां ये कफात का बाब शुरू हुआ था वहां पर साहिब हिदाया ने आपको बतलाया था कि आजाद आकिला बालिगा औरत जब अपना निकाह करेगी तो शेखैन रहमहुल्लाह के नजदीक वो निकाह मुनाकिद हो जाएगा, जबकि इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह का कौल वहां ये जिक्र हुआ था कि उनके नजदीक ये निकाह मौकूफ रहेगा वली की इजाजत पर। औरत अगर आकिला बालिगा है और अपनी मर्जी से खुद निकाह करती है तो यह निकाह मौकूफ होकर मुनाकिद होगा, यानी वली इजाजत देगा तो निकाह मुनाकिद हो जाएगा, वली इजाजत नहीं देगा तो निकाह मुनाकिद नहीं। तो मालूम हुआ इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक आजाद आकिला बालिगा जब निकाह करेगी तो वह वली की इजाजत पर मौकूफ रहेगा। और फिर वहीं पर यह बात आई थी कि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने शेखैन रहमहुल्लाह के कौल की तरफ रुजू कर लिया था
जी।
पहला कौल क्या था उनका कि निकाह मौकूफ रहेगा, दूसरा कौल शेखैन रहमहुल्लाह के कौल की तरफ रुजू किया कि यह निकाह मुनक़िद हो जाएगा, वली की इजाजत पर मौकूफ नहीं रहेगा। अब यहां देखो मसला, यहां पर साहिब हिदाया बतला रहे हैं कि साहिबैन के नजदीक औलिया एतराज नहीं कर सकते। इससे क्या मालूम हुआ, मालूम हुआ औरत का निकाह मुनाकिद हो गया है, वली की इजाजत के बगैर उसने निकाह किया है और महर थोड़ा रखा है, लेकिन अवलिया को एतराज का हक नहीं, मालूम हुआ उनकी इजाजत के बगैर ही निकाह मुनाकिद हो गया है। नई बात समझ में आई, फिर सुनो भाई इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह का पहला कौल यह था कि औरत खुद निकाह करेगी तो वो वली की इजाजत पर मौकूफ रहेगा, वली इजाजत देगा तो होगा, वली इजाजत नहीं देगा तो वो निकाह ही नहीं होगा। लेकिन फिर उन्होंने रुजू किया किसकी तरफ, शेखैन रहमहुल्लाह के कौल की तरफ, और शेखैन रहमहुल्लाह क्या फरमाते हैं कि निकाह मुनाकिद हो जाएगा, वली की इजाजत पर मौकूफ नहीं है, लेकिन कुफ में होना चाहिए बस। और यहां क्या बतला रहे हैं, औरत ने अगर अपना महर बहुत कम मुकर्रर किया, खुद निकाह किया है और बहुत कम मुकर्रर किया है, तो इमाम साहब क्या फरमाते हैं, औलिया एतराज कर सकते हैं। साहिबैन क्या फरमाते हैं, औलिया एतराज नहीं कर सकते। साहिबैन में इमाम मोहम्मद भी आ गए, मालूम हुआ इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक भी निकाह मुनाकिद हो चुका है और औलिया एतराज नहीं कर सकते। اس سے پتا چلا کہ یہ جو مسئلہ ذکر کیا صاحب قدوری نے یہ مبنی ہے امام محمد رحمہ اللہ کے دوسرے قول پر. پہلے قول کے مطابق تو نکاح منعقد ہی نہیں ہوا تھا اولی کی اجازت کے بغیر, دوسرے قول کے مطابق منعقد ہو گیا ہے اور اب اولیاء اس پر اعتراض بھی نہیں کر سکتے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو صاحب ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ یہ جو مسئلہ صاحب قدوری نے ذکر فرمایا اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام محمد رحمہ اللہ نے واقعی رجوع کر لیا تھا شیخین رحمہ اللہ کے قول کی طرف. تو کہتے ہیں وہذا الوضع انما يصح على قول محمد رحمہ اللہ. وضع, وضع کا معنی بنانا. دیکھو یہ جتنی مسئلے ہیں صورت مسئلہ بنائی جاتی ہے کہ اگر اس طرح ہوا تو یہ حکم ہے شریعت کا, اگر مسئلہ اس طرح ہوا تو اس طرح حکم ہوگا. دیکھو یہ تمام مسائل یہ نہیں کہ سارے اسی وقت پیش آئے تھے, بلکہ فقہا پر اللہ کی کروڑہا رحمتیں ہوں, انہوں نے ہر ہر صورت ذکر فرما دی. اگر اس طرح پیش آیا تو اس کا حکم یہ ہے, اگر اس طرح مسئلہ پیش آیا تو اس کا حکم یہ ہے. تو وضع کا معنی ہے مسئلہ بنانا, یعنی صورت بنانا. تو کہتے ہیں وہذا الوضع, اور یہ جو صورت مسئلہ بنائی گئی یعنی جو صاحب قدوری نے بنائی, صاحب قدوری نے یہ جو صورت مسئلہ بنائی, انما یصح علی قول محمد رحمہ اللہ, یہ امام محمد رحمہ اللہ کے قول پر صحیح ہو سکتی ہے, علی اعتبار قولہ المرجوع الیہ, وہ جو ان کا مرجوع الیہ قول تھا اس کے اعتبار سے, فی النکاح بغیر الولی, وہ جو بغیر ولی کے نکاح ہو اس کے بارے میں. بے دیکھو یہ عبارت سمجھ لو, ترجمہ سمجھ لو, امام محمد رحمہ اللہ نے نکاح بغیر الولی میں اختلاف کیا تھا, بغیر ولی کے نکاح میں اختلاف کیا تھا. شروع میں کیا کہا تھا؟ بغیر ولی کے نکاح منعقد ہوگا لیکن موقوف رہے گا ولی کی اجازت میں, اور بعد میں انہوں نے رجوع کر لیا کہ شیخین کے قول کی طرف کے نکاح منعقد ہو جائے گا. تو یہ جو قول جس کی طرف رجوع کیا امام محمد رحمہ اللہ نے, یہ ہوا مرجوع الیہ, وہ قول جس کی طرف رجوع کیا گیا. تو امام محمد رحمہ اللہ کا مرجوع الیہ قول لے لیں, کس مسئلے میں؟ نکاح بغیر ولی کے مسئلے میں. نکاح بغیر ولی کے نکاح کے مسئلے میں امام محمد رحمہ اللہ کا مرجوع الیہ قول لیں گے تو پھر ہی یہ مسئلہ صحیح ہو سکتا ہے, پھر ہی یہ امام محمد رحمہ اللہ کے قول کے مطابق ہوگا. ورنہ اگر ان کا پہلا قول لیا جائے پھر تو نکاح ہی منعقد نہیں ہے. اعتراض تو تب کیا جاتا ہے جب نکاح کیا ہو جائے, منعقد ہو جائے, جبکہ پہلے قول کے مطابق تو نکاح ہی منعقد نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر دیکھیے ترجمہ, کہتے ہیں وہاد الوضع انما يصح على قول محمد رحمه الله تعالى على اعتبار قوله المرجوع اليه, کہ یہ جو مسئلہ بنایا گیا ہے اس یہ صحیح ہو سکتا ہے امام محمد رحمہ اللہ کے قول پر اعتبار کرتے ہوئے ان کے مرجوع الیہ قول کا, اسی کے اعتبار پر یہ مسئلہ صحیح ہو سکتا ہے. فن نکاح بغیر الولی, وہ جو بغیر ولی کے نکاح ہوتا ہے اس کے اندر, وہ جو بغیر ولی کے نکاح ہوتا ہے اس میں جو امام محمد رحمہ اللہ کا مرجوع الیہ قول ہے اس کے اعتبار پر یہ مسئلہ امام محمد رحمہ اللہ کے قول پر ہو سکتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا پھر ترجمہ ذرا دیکھ لو, کہتے ہیں وہاد الوضع انما يصح, یہ جو مسئلہ وضع کیا صاحب قدوری نے, انما يصح, یہ تبھی صحیح ہو سکتا ہے علی قول محمد رحمہ اللہ, امام محمد رحمہ اللہ کے قول پر, یہ امام محمد رحمہ اللہ کے قول پر یہ وضع مسئلہ تبھی صحیح ہو سکتا ہے علی اعتبار قولہ المرجوع الیہ, جب اعتبار کیا جائے امام محمد رحمہ اللہ کے مرجوع الیہ قول کا, فی النکاح بغیر الولی, بغیر ولی کے نکاح کے مسئلے میں جب ان کے مرجوع الیہ قول کا اعتبار کیا جائے. وقد صح ذالک, اور تحقیق امام محمد رحمہ اللہ کا وہ رجوع صحیح ہے, یعنی واقعی انہوں نے کیا کیا تھا, رجوع فرمایا تھا. تو کہتے ہیں وقد صح ذلك, اور تحقیق امام محمد رحمہ اللہ کا وہ رجوع صحیح ہے. وہادہ شہادت صادقۃ علیہ, اور یہ جو مسئلہ ہے یہ سچی گواہی ہے اس پر, اس مسئلے سے گواہی مل گئی, اس مسئلے سے پتا چل گیا کہ واقعی امام محمد رحمہ اللہ نے رجوع فرما لیا تھا, کیونکہ اگر ان کا پہلا قول لیا جائے تو اس پر تو یہ مسئلہ کی وضع ہی نہیں ہو سکتی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو صاحب ہدایہ نے اس مقام کی یہ تقریر کی کہ اس یہ مسئلہ کس صورت میں صحیح ہو سکتا ہے؟ جب امام محمد رحمہ اللہ کا مرجوع الی قول اس کا اعتبار کیا جائے. جبکہ بعض شارحین فرماتے ہیں کہ امام محمد رحمہ اللہ کے پہلے قول پر بھی اس مسئلے کی وضع ہو سکتی ہے. پہلا قول کیا تھا؟ کہ وہ نکاح موقوف رہے گا. اس پر بھی اس مسئلے کی وضع ہو سکتی ہے. کس طرح؟ کہ مثلا ولی سے اجازت لی, عاقلہ بالغہ نے ولی سے اجازت لے لی, ولی نے اجازت دے دی لیکن اس نے مہر نہیں ذکر کیا. اب اس نے جا کر ولی کی اجازت سے نکاح کیا ہے لیکن مہر بہت تھوڑا رکھا. اب دیکھا ولی کی اجازت تھی, نکاح تو منعقد ہو گیا, نکاح تو منعقد ہو گیا. دیکھو امام محمد رحمہ اللہ کے پہلے قول کے مطابق ولی سے اجازت لے کر نکاح کیا ہے تو اس پہلے قول کے مطابق بھی نکاح ہو گیا, لیکن اس نے مہر بہت کم رکھا ہے تو ولی کیا کر سکتا ہے؟ اس پر اعتراض کر سکتا ہے. تو بہرحال بعض شارحین نے یہ صورت ذکر کی ہے, اگرچہ یہ بعید صورت ہے, ظاہر یہی ہے جو صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں بھائی, کہ امام محمد رحمہ اللہ کے مرجوع الی قول پر ہی اس مسئلے کی وضع ہے بھائی. اگرچہ وہ پہلے قول پر بھی اس مسئلے کی وضع ہو سکتی ہے لیکن وہ ایک بعید صورت ہے. ولی نے اجازت دے دی لیکن مہر ذکر نہیں کیا. بھائی عموم ولی اگر اجازت دے گا تو وہ تو نکاح بھی خود ہی کروائے گا. تو بہرحال بعض شارحین نے یہ صورت ذکر کی اگرچہ کچھ بعید صورت ہے, ظاہر یہی ہے صاحب ہدایہ کی بات قوی ہے بھائی. آگے دیکھیے, لہما انما زاد علی العشرۃ حقها ومن اسقط حقه لا يعترض علیہ کما بعد التسمیہ. اب دلیل ذکر فرما رہے ہیں, صاحبین کے نزدیک اولیاء کو اعتراض کا حق حاصل نہیں. وجہ کیا؟ صاحبین کی دلیل ذکر فرما رہے ہیں, یاد رکھو یہ جو مہر ہے نا, مہر آگے مہر ہی کا باب شروع ہونے والا ہے بھائی, اور وہاں آپ کو بتلائیں گے کہ کم سے کم مہر جو ہے نکاح کے اندر وہ 10 درہم ہو سکتا ہے. اس کا ذکر حدیث وغیرہ میں آتا ہے, 10 درہم سے مہر کم نہیں ہو سکتا. کوئی بھی عورت نکاح کرے تو کم از کم مہر کتنا ہوگا؟ 10 درہم, اس سے کم نہیں ہو سکتا. اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے, جتنا بھی مہر رکھوایا جائے, 1000 درہم ہے, 1,00,000 درہم ہے, 10,00,000 درہم ہے, زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے. تو معلوم ہوا 10 درہم سے مہر کم نہیں ہو سکتا, معلوم ہوا یہ شریعت کا حق. مہر کم سے کم 10 درہم ہونا چاہیے, یہ کس کا حق ہے؟ شریعت کا حق ہے, یہ شریعت کا حکم ہے, اس سے کم نہیں ہو سکتا. بات چل رہی تھی صاحبین کی دلیل. صاحبین فرماتے ہیں اولیاء کو اعتراض کا حق نہیں. وجہ یہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ 10 درہم تو شریعت کا حق ہے, 10 سے زائد یہ اس عورت کا حق ہے, اور یہ عورت اپنے حق میں جتنا بھی کمی کرے یہ اس کی مرضی ہے. صاحب حق اپنے حق میں جتنی کمی کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے, کسی کو اعتراض کا حق نہیں. مثلا کہتے ہیں دیکھو کسی عورت کا نکاح ہوا اور مہر 1,00,000 درہم مقرر ہوا, بعد میں نکاح کے بعد عورت نے اپنے خاوند سے کہا کہ 1,00,000 مہر دینے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے صرف 10,000 درہم مہر دے دو. تو دیکھو عورت مہر کے مقرر کرنے کے بعد میں اس میں کمی کر سکتی ہے, اور کسی کو اعتراض کا حق نہیں ہے. اولیاء بھی اعتراض نہیں کر سکتے کہ نہیں تمہیں 1,00,000 ہی لینا پڑے گا. اولیاء بھی اعتراض نہیں کر سکتے کیونکہ یہ اس عورت کا حق ہے بھائی, تو وہ اپنے حق میں جتنا مرضی کمی کر سکتی ہے. تو جیسے مہر کو مقرر کرنے کے بعد عورت اس میں جتنا چاہے کمی کر سکتی ہے, اسی طرح ابتداءً بھی 10 درہم سے جو زائد ہے وہ عورت کا حق ہے, وہ اس میں جتنا کمی کرنا چاہے کر سکتی ہے. تو اس نے اگر مہر مثل سے کم بھی مہر مقرر کیا ہے تو وہ اس نے اپنا حق چھوڑا ہے, لہذا اولیاء کو اس پر اعتراض کا حق نہیں. مسئلہ سمجھ میں آیا؟ دیکھیے کہتے ہیں لہما, صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ انما زاد علی العشرۃ حقها, کہ وہ جو 10 درہم پر زائد ہے وہ اس عورت کا حق ہے. بھئی 10 درہم تو شریعت کا حق, اس سے کم تو ہو نہیں سکتا, اور 10 سے زیادہ کیا ہے؟ عورت کا حق ہے. ومن اسقط حقه لا يعترض علیہ, اور جو شخص اپنا حق ساقط کر دے, لا يعترض علیہ, اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا. کما بعد تسمیتی, جیسے کہ ذکر کرنے کے بعد. تسمیہ کا جو بھی ترجمہ آپ کر لیں, مقرر کرنا یا ذکر کرنا. بھائی جب نکاح کیا جاتا ہے مہر کو مقرر کیا جاتا ہے یا مہر کو ذکر کیا جاتا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ تسمیہ. سما یسمی تسمیتن. بھائی نکاح میں جیسے میں نے مثال ذکر کر دی, مہر کتنا مقرر ہوا؟ 1,00,000. एक लाख दिरहम, और बाद में औरत क्या कहती है अपने खामन से, कहती है मुझे एक लाख महर देने की जरूरत नहीं, मुझे कितना महर दे दो, बस 10,000 दिरहम दे दो। तो देखो तस्मिया के बाद यानी जिक्र करने के बाद और मुकरर करने के बाद जब औरत अपने महर में कमी करे तो किसी को एतराज का हक नहीं है, क्योंकि वो महर उस औरत का ही हक है, तो अपने हक में कोई कमी करे तो उस पर एतराज नहीं किया जा सकता। तो जैसे बाद में वो अपने महर में कमी कर सकती है तो इब्तिदा में भी क्या कर सकती है, महर में कमी कर सकती है, हां 10 दिरहम से कम नहीं कर सकती, ये माना है। तो कहते हैं वमन असकता हक्कहु ला युअतरजु अलैहि, और जो शख्स अपना हक साकित कर देता है ला युअतरजु अलैहि, उस पर एतराज नहीं किया जा सकता। कमा बाद तस्मियति, जैसे कि महर को जिक्र करने के बाद उसमें वो कमी करे तो उस पर एतराज नहीं किया जा सकता। वली अबी हनीफा रहमहुल्लाह, और इमाम साहब की दलील यह है कि अन्नल औलिया, जी इमाम साहब की दलील इधर देखिए, इमाम साहब फरमाते हैं कि जो औलिया हैं औरत के जो औलिया हैं वो महर ज्यादा हो तो उस पर फख्र करते हैं कि हमारी औरतों का तो इतना इतना महर होता है, और महर कम हो तो उस पर आर महसूस करते हैं। लिहाजा ये कफाअत के मुशाबे हुआ, कफाअत में वो चीजें जिक्र थी जिन पर लोग फख्र करते हैं, नसब पर लोग फख्र करते हैं, दीन पर लोग फख्र करते हैं, और आजादी पर लोग फख्र करते हैं, इस्लाम पर लोग फख्र करते हैं, पेशों पर लोग फख्र करते हैं, और उनमें कमी आ जाए तो उसको आर महसूस करते हैं। इसी तरह महर के अंदर ज्यादती पर औलिया फख्र करते हैं और महर में कमी हो तो उसमें आर महसूस करते हैं। लिहाजा ये महर भी किसकी तरह हुआ, वो कफाअत वाली चीजों की तरह हुआ, उस पर लोग क्या करते हैं फखर महसूस करते हैं और आर महसूस करते हैं अगर कमी आ जाए तो। लिहाजा ये कफाअत की तरह मुशाबे हुआ, लिहाजा इसमें औलिया को एतराज का हक है। तो कहते हैं वली अबी हनीफा रहमहुल्लाह, और इमाम साहब की दलील ये है कि अन्नल औलिया अयफ्तखिरून बिगला इल मुहूरी, मुहूर जमा है महर की, गला का माना महंगा होना ज्यादा होना। अन्नल औलिया अयफ्तखिरून के औलिया जो है वो फखर करते हैं बिगला इल मुहूरी, महरों के महंगा होने पर, वयतअय्यरून बिनुकसानिहा, और इसमें कमी की वजह से आर महसूस करते हैं। फअशबहल कफाअता, लिहाजा ये जो महर के अंदर कमी बेशी है ये भी किसके मुशाबे हो गई, कफाअत के मुशाबे हो गई। याद रखो ये इसीलिए ये मसला यहां जिक्र किया साहिब हिदाया ने, फुकहा ने ये जो मसाइल जमा किए हैं बेतरतीब नहीं जमा किए भाई, एक एक मसला इंतहाई सोच समझ कर किसको कहां रखना है, किसको पहले रखना है, किसको बाद में रखना है, तो ये फुकहा ने देखो अपनी जिंदगियां इसके अंदर लगा दी। अब ये जो मसला जिक्र किया बजाहिर इस फसल के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं बनता, फसल क्या चल रही है कफाअत के बारे में, और कफाअत के बीच में अचानक साहिब कुदूरी और साहिब हिदाया ने मसला जिक्र कर दिया कि औरत अगर अपना महर कम रखेगी तो औलिया एतराज कर सकते हैं या एतराज नहीं कर सकते, तो बतलाया एतराज कर सकते हैं क्योंकि ये किसके मुशाबे हो गया, कफाअत के मुशाबे हो गया है। तो चूंकि ये भी कफाअत के मुशाबे हुआ यह मसला, इसलिए इसको कफाअत के मसलों के अंदर जिक्र किया, कफाअत की फसल में इसको जिक्र किया। तो कहते हैं फअश बहल कफा आता, तो ये कफात के मुशाबे हुआ। बिखिलाफ इल इबरा इबादत तस्मियति, इबरा का माना माफ करना, बखिलाफ माफ करना, बादत तस्मियति जिक्र करने के बाद यानी मुकर्रर करने के बाद। लिअन्नहु ला युतअय्यरु बिही, क्योंकि उसके जरिए आर महसूस नहीं किया जाता। भाई साहिबैन की दलील क्या थी कि जैसे महर मुकर्रर करने के बाद ये चूंकि सिर्फ औरत का हक है, वो बाद में इसमें जितनी मर्जी कमी कर दे चाहे सारा ही महर माफ कर दे, तो चूंकि वो उसका हक है तो जैसे इंतहान वो उसको उसमें कमी कर सकती है तो इब्तिदान भी उसमें महर में कमी कर सकती है। इमाम साहब जवाब दे रहे हैं कि नहीं, बाद में अगर वो माफ करे या कमी करे इसको तो ऐब नहीं शुमार किया जाता, बल्कि इसको तो एक उम्दा सिफत शुमार किया जाता है। अगर औरत बाद में क्या कर दे अपने खामंद को महर माफ कर देती है तो इसको कोई भी ऐब शुमार नहीं करता, बल्कि इसको तो एक उम्दा और आला सिफत और खसलत शुमार किया जाता है। लिहाजा आप इब्तिदाअन महर के कम होने को इंतहाअन महर के माफ करने या उसमें कमी करने पर कियास नहीं कर सकते। भाई बात समझ में आ गई। तो कहते हैं बिखिलाफ इबरा इबादत तस्मियती, बखिलाफ माफ करना बादत तस्मियती मुकरर करने के बाद, यानी मुकरर करने के बाद बाद में फिर माफ कर देना कि लिअन्नहु ला युतअय्यरु बिही, उसके जरिए आर महसूस नहीं की जाती। मसला समझ में आ गया। आगे देखिए कहते हैं वईदा ज़व्वजल अबुबनतहु सगीरत व नक़सा मिन महरिहा अबिबनहु सगीर व ज़ादा फी महरि इमरअतिहि जाज़ा ज़ालिका अलैहिमा वला यजूज़ु ज़ालिका लिग़ैरिल अबि वल जद। भाई ये बात पहले भी जिक्र हो चुकी कि अगर बाप या दादा सगीर या सगीरा का निकाह करवाएंगे तो बालिग होने के बाद भी उनको कोई इख्तियार नहीं है, जबकि और अवलिया अगर निकाह करवाएंगे तो इनको खियार बुलूग मिलेगा बालिग होने पर, वो इस निकाह को फसख कर सकते हैं। और मैंने आपको यह भी बतलाया था कि बाप और दादा अगर चाहे गैर कुफ में निकाह करवा दें, चाहे महर सगीरा का महर बहुत कम मुकरर कर दें, या सगीर का निकाह करवाया था और उसकी बीवी का महर बहुत ज्यादा मुकरर कर दिया, अब देखो इसमें सगीर या सगीरा का नुकसान है, लेकिन फिर भी ये निकाह मुनक़िद हो जाएगा और सगीर और सगीरा को कोई इख्तियार नहीं होगा बालिग होने के बाद। वजह यह कि बाप और दादा की शफकत बड़ी कामिल है भाई, मालूम हो उन्होंने कोई बहुत बड़ा फायदा देखकर ही इस तरह यह फैसला किया होगा तो यह निकाह नाफिज होगा और सगीर और सगीरा को बालिग होने के बाद कोई इख्तियार नहीं। अब इसी को जिक्र कर रहे हैं, कहते हैं वईदा ज़व्वजल अबुबनतहु सगीरता, और जब निकाह करवाया बाप ने अपनी नाबालिग बेटी का, व नक़सा मिन महरिहा, और कम कर दिया उसके महर में से, यानी महरे मिसल से बहुत कम रखा, थोड़ा बहुत फर्क तो आता ही है, उसकी बात नहीं कर रहे ज्यादा, तो वरना कसम महरिहा, और उसके महरे मिसल में कमी कर दी, और अभी बनाहु सगीरा, या बाप ने निकाह करवाया अपने नाबालिग बेटे का, वजादा फी महर इमरअती ही, और बढ़ा दिया उसके बीवी के महर में, बीवी का महर 1 लाख होना चाहिए था इस सगीर का जहां निकाह करवाया है, बाप ने 2 लाख मुकर्रर कर दिया, जाजा जालिका अलैहिमा, तो ये सगीर और सगीरा पर जायज है, यानी बाप ये कर सकता है और दादा का भी यही हुक्म, वला यजूज़ु ज़ालिका लिग़ैरिल अबी वल जद्दी, और बाप और दादा के अलावा ये किसी के लिए जायज नहीं, यानी बाप और दादा के अलावा कोई और अवलिया निकाह करवाते हैं तो सगीर या सगीरा का निकाह महरे मिसल के साथ ही करना पड़ेगा। कहते हैं वहादा इंदा अबी हनीफा रहमतुल्लाह, ये इमाम साहब के नजदीक है कि ये बाप और दादा महर में कमी ज्यादती कर सकते हैं। वकाला, और साहिबैन फरमाते हैं, ला यजूज़ुल हत्तु वज़ियादतु इल्ला बिमा यतगाबनुन नासु फीह। भाई गबन, गबन और तगाबुन का माना समझ लें। गबन कहते हैं दूसरे को नुकसान देना, गबन का क्या माना, दूसरे को नुकसान देना, धोखा देना, और तगाबुन का माना नुकसान देना भी और नुकसान खाना भी, नुकसान देना भी और नुकसान खाना भी। भाई बाबे तफाउल है ना, जानिबैन से फेल चाहता है, एक शख्स दूसरे को धोखा दे रहा है तो दूसरा धोखा खा रहा है, सूरत समझ में आ गए, तो इसका माना धोखा देना भी और धोखा खाना भी। वकाला साहिबैन फरमाते हैं, ला यजूज़ुल हत्तु वज़ियादतु, हत का माना कमी करना, कहते हैं साहिबैन फरमाते हैं, ला यजूज़ुल हत्तु व ज़ियादतु, की कमी या ज्यादती जायज नहीं है, इल्ला बिमा यतगाबनुन नासु फीही, मगर उतनी मिकदार के जितना लोग बाहम धोखा देते या धोखा खाते हैं। भाई देखो, बाजार में आप कोई चीज फरोख्त करते हैं, मसलन वो 100 रुपए की चीज है, तो एक दुकानदार के पास लेकर जाएंगे, हो सकता है उसकी कीमत 100 रुपए ही लगाए कि मैं आपसे ये 100 रुपए में खरीदता हूं, दूसरे के पास जाएंगे वो 100 रुपए नहीं लगाएगा, हो सकता है वो कुछ कम लगा दे कि मैं आपसे ये चीज 95 में ले लूंगा, एक और दुकानदार के पास ले गए उसको ख्याल, वो हो सकता है आपको कह दे मैं आपसे 105 रुपए की ये चीज खरीद लूंगा, तो ये जो दुकानदार होते हैं ये चीजों की जो कीमत लगाते हैं ये करीब करीब होती है, इसको गबन यसीर कहते हैं। ये तो थे आप एक चीज बेचने गए दुकानदार के पास, एक यह है कि आप दुकानदार से कोई चीज खरीदने गए, आजकल तो चीजों पर कीमतें लिखी होती हैं, लेकिन जिन चीजों पर कीमतें न लिखी हों उसमें भी आप देखें, एक दुकानदार मसलन आपको कहता है 100 रुपए की चीज है, वो आपको कहेगा मैं ये आपको 105 रुपए की दूंगा, दूसरे के पास जाते हैं हो सकता है वो आपको 100 रुपए में ही दे दे वो चीज, तीसरे के पास जाकर पता करेंगे वो आपको कहेगा मैं 95 या 90 रुपए की आपको ये चीज दूंगा। तो देखा, दुकानदार जो कीमतें वगैरह लगाते हैं चीजों की वो करीब करीब होती हैं, इसको कहते हैं गबने यसीर। क्या कहते हैं? गबने यसीर, यानी थोड़ा बहुत धोखा हो ही जाता है। आप जब एक चीज लेने जा रहे हैं, खरीदने जा रहे हैं या बेचने जा रहे हैं, थोड़ा बहुत, क्योंकि पूरी पूरी जितनी उस चीज की कीमत बनती है वैसा तो कम ही होगा कि उतने में आपको वो चीज मिल जाए, तो वो थोड़ी बहुत कमी बेशी होगी, इसको क्या कहते हैं? गबने यसीर, थोड़ा बहुत धोखा चीज में लग ही जाता है इंसान को। हो सकता है आपकी चीज 100 रुपए की थी, लेकिन आपसे दुकानदार ने सिर्फ 90 रुपए में खरीद ली या 95 में खरीद ली, लेकिन यह गबने यसीर है। लेकिन यही चीज अगर आपसे कोई दुकानदार 50 रुपए में खरीदता है तो ये तो गबने फाहिश है भाई, बहुत ज्यादा धोखा है, आम लोग इस तरह धोखा नहीं खाते। तो लिहाजा साहिबैन फरमाते हैं, तवज्जो से सुनो, इमाम साहब क्या फरमाते हैं, बाप या दादा अगर बहुत ज्यादा फर्क के साथ भी महर मिसल से बहुत कम महर रख दिया सगीरा का, या सगीर का निकाह जिस औरत से करवाया महर बहुत ज्यादा रख दिया, 1 लाख की जगह 2 लाख रख दिया भाई, इमाम साहब फरमाते हैं अगर बाप और दादा निकाह करवाएंगे तो निकाह मुनक्किद हो जाएगा। जबकि साहिबैन फरमाते हैं कि बाप और दादा जब निकाह करवाएं तो जरूरी है कि वो महर मिसल के साथ निकाह करवाएं। किसके साथ? यानी जितना उस सगीरा का महर होना चाहिए उतना महर हो, और सगीर की बीवी का जितना महर होना चाहिए उतना महर होना चाहिए, या गबन यसीर हो, यानी थोड़ा बहुत फर्क आ जाए, थोड़ा बहुत फर्क आ जाए, क्योंकि थोड़ा बहुत तो फर्क आ ही जाता है भाई। तो गबन यसीर के साथ अगर ये निकाह करवाएंगे तो फिर ये निकाह हो जाएगा, और अगर गबन फाहिश के साथ हो ये निकाह, यानी सगीरा का महर होना चाहिए था 2 लाख और बाप और दादा ने महर सिर्फ 1 लाख रख दिया, और या सगीर का निकाह करवा रहे थे उसकी बीवी का महर होना चाहिए था 1 लाख और बाप दादा ने 2 लाख महर रखवा दिया, तो देखो ये तो गबन फाहिश है, तो गबन फाहिश जायज नहीं। इमाम साहब क्या फरमाते हैं, चाहे गबन यसीर हो चाहे गबन फाहिश हो, बाप दादा के लिए सब जायज है। साहिबैन क्या फरमाते हैं, बाप दादा के लिए गबन यसीर तो जायज है, गबन फाहिश जायज नहीं है, ये माना है। वकाला, और साहिबैन फरमाते हैं, ला यजूजुल हत्तु वज़ियादतु इल्ला बिमा यतगाबनुन नासु फीही, कि कमी या ज्यादती जायज नहीं, इल्ला बिमा यतगाबनुन नासु फीही, मगर उतनी मिकदार जितने में लोग धोखा खा लेते हैं। व माना हादल कलामी, अब साहिब हिदाया साहिबैन के कौल का माना बयान कर रहे हैं। साहिबैन ने क्या फरमाया, गबन यसीर जायज है, गबन फाहिश जायज नहीं। इससे क्या पता चला, बजाहिर यूं लगता है कि गबन फाहिश के साथ अगर बाप और दादा निकाह करवाएंगे तो निकाह हो जाएगा, अलबत्ता ये कमी बेशी जायज नहीं। देखो ना इबारत देखो पीछे, वकाला ला यजूजुल हत्तु व ज्यादतु, कमी ज्यादती जायज नहीं है, यानी गबन फाहिश के साथ कमी ज्यादती जायज नहीं, गबन यसीर के साथ जायज है। तो साहिबैन की इबारत से बजाहिर यूं लगता है वो ये फरमा रहे हैं, अगर बाप और दादा गबन फाहिश के साथ निकाह करवाएंगे तो निकाह हो जाएगा, लेकिन वो गबन फाहिश सही नहीं, वहां महर मिसल ही आ जाएगा। बजाहिर यूं लगता है निकाह हो जाएगा भाई। याद रखो, याद रखो एक मसला, यहां आगे साहिब हिदाया भी बयान फरमाएंगे, निकाह में महर का होना जरूरी है, महर के बगैर निकाह हो ही नहीं सकता। तवज्जो है, जब भी कोई शख्स किसी औरत से निकाह करेगा वहां महर का होना जरूरी है, और महर की कम से कम मकदार 10 दिरहम है, अभी बयान हो गया, इससे कम महर नहीं हो सकता। और यह भी याद रखना, अगर महर को जिक्र ही नहीं किया निकाह करते हुए तो भी निकाह मुनाकिद हो जाएगा। मसलन एक मर्द और औरत निकाह कर रहे हैं और महर को सिरे से जिक्र ही नहीं किया तो महर तो जरूर आएगा भाई, इन्होंने बेशक नहीं जिक्र किया लेकिन वहां खुद बहुत महरे मिसल आ जाएगा। यानी इस जैसी औरत का जो महर होता है इसके खानदान में उतना ही महर होगा।
महर को जिक्र ना करें फिर भी क्या आ जाता है, महरे मिसल। और अगर बाकायदा तय कर लिया कि मैं तुमसे निकाह कर रहा हूं लेकिन महर कुछ नहीं होगा, महर की बाकायदा नफी कर दी, फिर भी महर खुद ब खुद आ जाएगा, फिर भी, क्योंकि निकाह महर के बगैर हो ही नहीं सकता। अब देखो, मालूम हुआ जब भी निकाह किया जाए, महर को चाहे जिक्र करें चाहे जिक्र ना करें, चाहे बाकायदा महर की नफी कर दें, फिर भी निकाह पे कोई असर नहीं पड़ता, निकाह हो जाएगा
जी।
महर की कमी बेशी से या ना होने से निकाह पर असर नहीं पड़ता, निकाह हो जाएगा। हां, अलबत्ता महरे मिसल फिर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो यहां पर भी साहिबैन क्या फरमा रहे हैं कि गबन यसीर के साथ जायज है, गबन फाहिश के साथ कमी ज्यादती जायज नहीं। इससे मालूम यूं होता है कि शायद निकाह हो जाएगा, क्योंकि महर की कमी बेशी से तो निकाह पे कोई असर नहीं पड़ता, तो गबन फाहिश के साथ भी अगर निकाह करेंगे बाप दादा तो यह गबन फाहिश जायज नहीं। तवज्जो है, ये लफ्जों पर नजर रखो, वकाला ला यजूजुल हत्तु व ज्यादतु, और साहिबैन फरमाते हैं कि कमी बेशी जायज नहीं मगर इतनी मिकदार जिसमें लोग धोखा खा जाते हैं
जी।
कमी बेशी जायज नहीं है, मालूम गबन फाहिश के साथ अगर कमी बेशी करेंगे वो कमी बेशी नहीं जायज। बजाहिर शुबा होता है शायद निकाह तो हो जाएगा, निकाह तो महर मुकरर ना भी करें फिर भी हो जाता है, तो बजाहिर लगता है निकाह हो जाएगा, अलबत्ता वो गबन फाहिश सही नहीं होगा, महरे मिसल आ जाएगा। तो साहिब हिदाया बतलाएंगे कि नहीं, इस कलाम का मतलब यह है कि वो निकाह ही मुनकिद नहीं होगा, वो निकाह ही, बाप और दादा क्या करना चाह रहे हैं, गबन फाहिश के साथ निकाह करवाना चाह रहे हैं, कहते हैं वो निकाह ही मुनकिद नहीं होगा, साहिबैन के कौल का यह माना है। बात समझ में आ गई? तो ये माना है, कहते हैं वह माना हादल कलामी, और साहिबैन के इस कलाम का माना यह है कि अन्नहू ला यजूज़ुल अक़्दु इंदहुमा, के उनके नजदीक ये अकद जायज ही नहीं है, लिअन्नल विलायता मुकय्यदतुन बिशर्तिन नजर। साहिबैन की दलील जिक्र फरमा रहे हैं, साहिबैन फरमाते हैं देखो ये बाप दादा को जो सगीर और सगीरा पर विलायत दी गई थी, ये किस लिए दी गई थी, शफकत की वजह से, कि बाप और दादा क्या करते हैं, सगीर और सगीरा पर शफकत करते हैं, उनकी औलाद है या औलाद की औलाद है तो वो उन पर शफकत करते हैं, लेकिन जब वो महरे मिसल से कमी या ज्यादती कर रहे हैं तो उसमें तो कोई शफकत नहीं, और ये विलायत क्यों थी, शफकत की वजह से, और जब शफकत नहीं तो विलायत भी नहीं। बात समझे? तो शफकत शर्त और विलायत मशरूत, शर्त है तो मशरूत है, शर्त नहीं तो मशरूत भी नहीं, शफकत होगी तो विलायत भी हासिल रहेगी, शफकत नहीं होगी तो विलायत भी हासिल नहीं। जैसे वुजू होगा तो नमाज होगी, वुजू नहीं तो नमाज भी नहीं। तो कहते हैं लिअन्नल विलायत मुकय्यदतुन बिशर्तिन नजरी, इसलिए क्योंकि ये वाली जो विलायत है ये मुकय्यद है, बिशर्तिन नजरी, शफकत की शर्त के साथ, फाइंदा फवाती ही यब तुलुल अक्दु, बस जिस वक्त ये शफकत फौत हो जाए यानी न पाई जाए, यब तुलुल अक्दु तो आकद बातिल होगा, आकद हो गई नहीं। वहादा, और ये इसलिए, लिअन्न अलहत्त अन महरिल मिस्ली लैसा मिनन नजरी फी शैइन, लिअन्न अलहत्त अन महरिल मिस्ली, इसलिए क्योंकि महरे मिसल से कमी करना, सगीरा का महर कितना होना चाहिए था, 2 लाख, महरे मिसल 2 लाख, बाप ने दादा ने कितना रख दिया, 1 लाख, तो ये जो लिअन्न अलहत्त अन महरिल मिसली, ये जो महरे मिसल से कमी कर दी, लैसा मिनन नजर, ये शफकत में से नहीं है, फी शैइन किसी भी चीज में, ये शफकत में से नहीं है किसी भी चीज में, यानी किसी भी लिहाज से ये शफकत में नहीं है, कमा फिल बै, जैसे किसके अंदर, बै के अंदर, कमा फिल बै, भाई ये बात भी पीछे जिक्र हो चुकी है, तवज्जो है भाई, बात यह गुजरी थी कि सगीर या सगीरा के निकाह का मामला है तो बाप और दादा को भी विलायत इजबार हासिल है और औलिया को भी विलायत इजबार हासिल है, लेकिन बाप और दादा को विलायत इजबार जो हासिल है वो विलायत इल्जाम है,
यानी वो सगीर और सगीरा पर वो निकाह लाजिम हो जाएगा, वो बड़े होकर बालिग होकर भी इसको फसख नहीं कर सकते। जबकि दीगर अवलिया अगर निकाह करवाएंगे तो बालिग हो जाने के बाद सगीर और सगीरा को खियार बुलूग मिलेगा, वो इस निकाह को फसख कर सकते हैं। तवज्जो है। तो निकाह के अंदर विलायत बाप दादा के अलावा और अवलिया को भी हासिल है, लेकिन माल के अंदर जो विलायत है सगीर या सगीरा के माल के अंदर तसरुफ करना, यह सिर्फ विलायत बाप और दादा को हासिल है और किसी अवलिया को यह विलायत हासिल नहीं। सगीर या सगीरा को किसी ने माल दे दिया, मसलन कोई शख्स मरने लगा, उसने वसीयत कर दी मेरे मरने के बाद वो जो जैद का नाबालिग बेटा है 10 लाख रुपए मेरे मरने के बाद मेरे माल में से उसको दे देना, तो अब वो सगीर को देखो 10 लाख रुपए मिल गए। अब बाप और दादा तो इस माल में तसर्रुफ कर सकते हैं, अगर बाप और दादा वफात पा चुके हैं तो फिर किसी और वली को इस माल में तसर्रुफ का हक नहीं। बात समझ में आ गई। ये तो मैंने मिसाल दी, किसी ने वसीयत की थी 10 लाख रुपए की, या किसी तरह कोई वसीयत कर देता है कि मेरे मरने के बाद ये गाड़ी जो है जैद के नाबालिग बेटे को दे देना, या मेरे मरने के बाद मेरा ये प्लाट या ये घर जो है जैद के नाबालिग बेटे को दे देना। अब बाप और दादा इस माल के अंदर तसर्रुफ करना चाहते हैं और किसी को तसर्रुफ का हक नहीं, इनको हक है। और ये भी याद रखो, ये जो सगीर या सगीरा के लिए कोई चीज बेचेंगे या खरीदेंगे तो वो सामान्य मिसल के साथ बेचना और खरीदना जरूरी है। किसके साथ? यानी वो गबन फाहिश के साथ कोई चीज खरीद या बेच नहीं सकते। एक प्लाट सगीर को मिला हुआ है, वो बाप या दादा प्लाट को बेचना चाहते हैं, मसलन उस प्लाट की कीमत है 50 लाख और बाप दादा इसको 25 लाख में या 20 लाख में बेचना चाहते हैं, नहीं, ये गबन फाहिश के साथ आपको बेचने की इजाजत नहीं है। बात समझ में आ गई। तो साहिबैन फरमाते हैं, साहिबैन की दलील चल रही है, साहिबैन क्या फरमाते हैं कि बाप और दादा को हमने विलायत इजबार दी। किस लिए दी थी? क्योंकि इनकी शफकत बड़ी कामिल है। तो अगर ये महर में गबन फाहिश के साथ कमी कर देंगे या ज्यादती कर देंगे तो इसमें तो कोई शफकत नहीं है, लिहाजा इस सूरत में इनको विलायत ही हासिल नहीं होगी, वो निकाह होगा ही नहीं। ये इसी तरह है जैसे बैग के अंदर बाप और दादा को सगीर के माल के अंदर विलायत हासिल है, लेकिन अगर वो गबन फाहिश के साथ कोई चीज खरीदना या बेचना चाहेंगे तो वो बाप दादा को भी हासिल नहीं, तो निकाह में भी इसी तरह होगा। बात समझ में आ गई। तो उन्होंने ये निकाह को कियास किया बैग पर, जैसे बैग के अंदर बाप और दादा गबन फाहिश की उनको इजाजत नहीं, इसी तरह निकाह में भी उनको गबन फाहिश की इजाजत नहीं होगी। यह माना है कमा फिल बैई, जैसे कि बैग के अंदर है। वलिहादा लम यम लिक जालिका गैरहुमा, इसीलिए इसका मालिक नहीं है गैरहुमा, बाप और दादा के अलावा। यह जो कमी की है जालिका के जरिए इशारा है जो पीछे आया था, ले अनल हत अन महरिल मिसली, महरे मिसल में ये जो कमी है इसका मालिक बाप दादा के अलावा और कोई नहीं। वो लिहादा लम यम लिख दालिका गैरहुमा, और इसीलिए महर में ये जो कमी है या इसमें जो ज्यादती है इसका मालिक नहीं है गैरहुमा, बाप और दादा के अलावा। भाई देखो, ये कमाफिल बैई, जरा इस इबारत को निकाल दो और बाकी इबारत को जोड़ो। देखो, वहादा लि अन्नल हत अन महरिल मिसली लैसा मिनन नजरी फी शैइन, इसलिए क्योंकि महरे मिसल में कमी करना इसमें शफकत नहीं है, फी शैइन किसी भी चीज में, यानी किसी भी एतबार महरे मिसल में कमी कर दी जाए इसमें किसी भी एतबार से शफकत नहीं है। वो लिहाजा लम यमलिक दालिका गैरहुमा, इसीलिए इसके मालिक बाप दादा के अलावा और कोई नहीं है। बाप दा, देखो साहिबैन क्या फरमाते थे, बाप और दादा गबन यसीर कर सकते हैं महर में, गबन फाहिश नहीं। और इमाम साहब के नजदीक गबन यसीर भी कर सकते हैं और गबन फाहिश भी। तो मालूम हुआ गबन यसीर तो बिल इतफाक इमाम साहब के नजदीक भी बाप और दादा कर सकते हैं और साहिबैन के नजदीक भी। तो साहिबैन फरमाते हैं कि देखो, ये जो महर में कमी की गई है इसमें किसी भी एतबार से शफकत नहीं है, इसीलिए बाप और दादा के अलावा इस कमी के मालिक और कोई नहीं। बाप और दादा के अलावा कोई और ये कमी नहीं कर सकता, यानी जो गबन यसीर भी करना है ये सिर्फ कौन कर सकते हैं,
बाप और दादा कर सकते हैं, बाकी अवलिया अगर करेंगे उनको गबन यसीर की भी इजाजत नहीं है, उनको महरे मिसल में ही करवाना पड़ेगा
जी।
उनको इबारत समझ में आई क्या कहना चाहते हैं कि जो महरे मिसल में कमी की जाएगी ये तो क्या है इसमें शफकत नहीं, लिहाजा महरे मिसल में कमी के मालिक बाप दादा के अलावा कोई नहीं, और बाप दादा भी कितनी कमी के मालिक हैं, गबन यसीर के मालिक हैं, बाकी अवलिया वो गबन यसीर के मालिक भी नहीं है, ये माना है। वलिहादा लम यम लिक दालिक गैरहुमा, और इसीलिए महर में इस कमी के मालिक बाप दादा के अलावा और कोई भी नहीं है, यानी बाप दादा गबन यसीर के साथ कमी कर सकते हैं और बाकी अवलिया गबन यसीर के साथ कमी भी नहीं कर सकते। वली अबी हनीफा रहमहुल्ला, अब इमाम साहब की दलील आ गई। इमाम साहब फरमाते हैं कि यहां बाप और दादा ने निकाह करवाया है और निकाह में बहुत सी मसलहतें और मकासिद होते हैं जो जो महर से बढ़कर होते हैं। सिर्फ निकाह में औरत के लिए महर ही नहीं मकसूद होता, बल्कि उसने घर बसाना है, आगे औलाद हासिल होगी, औलाद की तरबियत करनी है, तो अच्छा खानदान होगा, अच्छी जगह मिलेगी, तो तमाम जिंदगी राहत के साथ गुजरेगी। तो निकाह के मकासिद सिर्फ महर है या महर से भी बढ़कर और मकासिद मौजूद हैं निकाह के अंदर? और मकासिद भी निकाह में मौजूद हैं। लिहाजा बाप और दादा ने निकाह करवाया, अब उन्होंने महर तो बहुत कम या बहुत ज्यादा मुकर्रर कर दिया, सगीरा है तो महर बहुत कम कर दिया, या सगीर था तो उसकी बीवी का महर बहुत ज्यादा रखवा दिया, तो अब महर में तो कमी बेशी कर दी, लेकिन सिर्फ महर तो मकसूद नहीं होता, निकाह में तो और भी मकासिद होते हैं, तो हो सकता है किसी और बड़ी मसलहत और बड़े फायदे की वजह से बाप और दादा ने इस तरह निकाह करवाया हो। लिहाजा ये जो सगीर और सगीरा का निकाह करवाया बाप और दादा ने, महर बहुत कम है या बहुत ज्यादा है, लेकिन इसमें फायदा है या नुकसान ये पूरी तरह जाहिर नहीं। महर के एतबार से देखें तो बहुत नुकसान हो रहा है, लेकिन हो सकता है इसके मुकाबले में कोई बहुत बड़ा फायदा उनके सामने हो, तो लिहाजा फायदा या नुकसान तो पूरी तरह जाहिर नहीं। जब एक चीज का पूरी तरह पता नहीं चल सकता तो फिर उस चीज की जो दलील है उस पर हुक्म का मदार हो जाएगा। फिर सुनो, बाप और दादा ने निकाह करवाया, बाप और दादा को इख्तियार क्यों दिया था शरीयत ने? शफकत की वजह से। लेकिन अब ये जो निकाह करवाया, महर थोड़ा है या ज्यादा, अब पता नहीं इसमें शफकत है या शफकत नहीं, ये अमरे बातनी है, पूरी तरह वाजह नहीं। हो सकता है महर में नुकसान हो रहा है लेकिन कोई और दूसरा बहुत बड़ा फायदा देखकर बाप या दादा ने यह निकाह करवाया है, लिहाजा शफकत है या शफकत नहीं यह एक अमरे बातनी बन गया, पूरी तरह यह बात वाजह नहीं कि इस निकाह में शफकत है या शफकत नहीं, यानी फायदा है या नुकसान है, तो यह अमरे बातनी हुआ। जब शफकत का पता नहीं चल सकता तो दलील शफकत पर हुक्म का मदार हो जाएगा, और दलील शफकत क्या है? वह कुर्ब कराबत है, ये उसके करीबी रिश्तेदार हैं सगीर या सगीरा के, बाकियों के साथ रिश्ता भी बाप और दादा के वास्ते से है, तो कुर्ब कराबत जो है यानी शफकत की जो दलील है उस पर हुक्म का मदार हो जाएगा, और कुर्ब कराबत तो मौजूद है लिहाजा ये निकाह जायज हो जाएगा। नई तवज्जो, नई तवज्जो, अच्छी तरह समझ लो। देखो बाज़ औकात किसी हुक्म की इल्लत पर इंसान मुत्तले नहीं हो सकता तो फिर उस हुक्म का मदार सबब पर कर दिया जाता है, जैसे वुजू जो है खुरूज नजासत की सूरत में वुजू टूट जाता है और कोई शख्स सोया हो तो फिर भी उस वक्त भी इहतमाल है खुरूज नजासत का, लिहाजा कोई पहलू के बल सोया हो तो वुजू टूटने का हुक्म लगाया जाएगा। तो अब देखो यहां नींद की हालत में खुरूज नजासत का इलम नहीं हो सकता, तो इस खुरूज नजासत का जो सबब है यानी ये जो नींद है इस पर हुक्म का मदार कर दिया जाएगा। तो यहां भी इसी तरह है, देखो बाप और दादा ने निकाह करवाया, महर बहुत कम या ज्यादा है, तो अब पता नहीं इस निकाह में फायदा है या नुकसान है, हो सकता है कोई और फायदा देखकर उन्होंने करवाया हो, तो फायदा या नुकसान होना वो अमरे बातनी बन गया, या यूं कहो इस निकाह में शफकत है या शफकत नहीं है ये अमरे बातनी बन गया, इसका पूरी तरह पता नहीं चल सकता। जब ये अमरे बातनी है शफकत का होना या ना होना, तो फिर इस शफकत की जो दलील है, जो इस शफकत की दलील है उस पर हुक्म का मदार हो जाएगा, और शफकत की दलील क्या है? कुर्ब कराबत, ये करीबी रिश्तेदार हैं बाप और दादा, तो करीबी रिश्तेदार होना
यह दलील है शफकत की। तो जब शफकत का पता नहीं चल सकता तो यह जो शफकत की दलील है यानी कुर्ब कराबत, इस पर हुक्म का मदार हो जाएगा, और कुर्ब कराबत तो मौजूद है लिहाजा यह निकाह मुनाकिद हो जाएगा। साहिबैन तो फरमाते हैं निकाह मुनाकिद नहीं होगा, लेकिन इमाम साहब क्या फरमाते हैं निकाह मुनाकिद हो जाएगा। वली अबी हनीफा रहिमहुल्लाह, और इमाम साहब की दलील यह है कि अन्नल हुक्म युदारु अला दलील नजरी, के हुक्म का दारो मदार जो है अला दलील नजरी, शफकत की दलील पर होगा। शफकत है या शफकत नहीं ये तो पता नहीं चल सकता, ये तो अमरे बातनी है, लिहाजा शफकत पर हुक्म का मदार नहीं होगा क्योंकि उसका पता नहीं चल सकता। तो फिर शफकत की दलील क्या है? कैसे आपने कहा यह इनमें शफकत है? कुर्ब कराबत की वजह से, करीबी रिश्ते की, वो करीबी रिश्ता तो मौजूद है ना, जब करीबी रिश्ता मौजूद है तो फिर ये निकाह मुनाकिद हो जाएगा। वली अबी हनीफा इमाम साहब की दलील यह है कि अन्नल हुक्म युदारु अला दलील नजरी, के हुक्म जो है इसका दारो मदार जो है वह शफकत की दलील पर होगा। वह कुर्बुल कराबती, और वह करीबी रिश्तेदारी है। वफिन निकाह मकासिद उतरबू अलल महरी, और निकाह के अंदर ऐसे मकासिद होते हैं, तरबू रबा अरबू का माना है जायद होना, वफिन निकाह मकासिद, और निकाह में ऐसे मकासिद होते हैं तरबू अलल महरी, जो महर से बढ़कर होते हैं। भाई निकाह के अंदर महर के अलावा भी और बहुत मकासिद होते हैं, सिर्फ महर का मिलना लड़की को यह मकसूद नहीं होता, बल्कि और भी मकासिद होते हैं, घर बसाना है, औलाद हासिल होगी और औलाद की तरबियत करनी है, तो ये सारे मकासिद निकाह के अंदर होते हैं। लिहाजा अगर एक जगह कमी आई है और बाप और दादा करवा रहे हैं, मालूम है दूसरी तरफ कोई फायदा हो रहा है, जब भी वो इसका महर में राजी हुए हैं। भाई तो कहते हैं वफिन निकाह मकासिद तरबू अलल महरी, और निकाह के अंदर ऐसे बहुत से मकासिद होते हैं जो महर से बढ़कर होते हैं। निकाह में सिर्फ औरत के लिए महर ही मकसूद नहीं है, बल्कि निकाह में और भी बहुत से मकासिद होते हैं जो महर से बढ़कर होते हैं। बात समझ में आ गई। अमल मालियतु हियल मकसूदतु फी तसर्रुफिल मालिय, जी ये आप जवाब दे रहे हैं साहिबैन का कियास का। साहिबैन ने निकाह को कियास किया था किस पर? बै पर, और बै के अंदर बाप और दादा के लिए गबन फाहिश जायज नहीं, तो निकाह में भी गबन फाहिश जायज नहीं। उसका जवाब दे रहे हैं कि भाई बै पर आप निकाह को कियास नहीं कर सकते, क्योंकि बै के अंदर सिर्फ मालियत ही मकसूद होती है। ब्याह के अंदर सिर्फ माल, सिर्फ माल मकसूद होता है, वहां और फायदे नहीं देखे जाते। बाप 50 लाख का प्लाट 20 लाख में बेच रहा है तो सरासर नुकसान ही नुकसान है, और कोई फायदा यहां पर नहीं। जबकि निकाह में सिर्फ महर मकसूद होता है, और भी मकासिद होते हैं निकाह में, तो और भी मकासिद हैं, सिर्फ महर की मालियत मकसूद नहीं है, जबकि ब्याह में सिर्फ मालियत मकसूद है। लिहाजा आप निकाह को ब्याह पर कियास नहीं कर सकते। कहते हैं अमल मालियतु हियल मकसूदतु फी तसर्रुफिल मालिय, बाकी मालियत जो है वही मकसूद होती है माली तसर्रुफ में, यानी बेअ वगैरह के अंदर। व दलील आदिम नाहू फी हक गैरिही मा, और दलील जो है आदिम नाहू, हमने उसको नहीं पाया है। आदिमा यादम के माने हैं ना पाना। व दलील आदिम नाहू फी हक गैरिही मा, और दलील हमने नहीं पाई बाप दादा के अलावा के हक में। भाई देखिए इमाम साहब की दलील चल रही है, इमाम साहब क्या फरमाते हैं कि जो बाप दादा ने गबन फाहिश के साथ निकाह करवाया, निकाह के तो और भी मकासिद हो सकते हैं, तो महर के एतबार से देखें नुकसान है, लेकिन हो सकता है कोई और फायदा भी हो इसमें, तो लिहाजा इस निकाह में शफकत है या शफकत नहीं ये कमरे बातनी हो गया, इसका पता नहीं चल सकता पूरी तरह। जब एक चीज का पूरी तरह पता ना चल सके तो फिर उसकी दलील पर हुक्म का मदार हो जाता है, और दलील शफकत तो यहां मौजूद है, और वो क्या कि बाप और दादा में कुर्ब कराबत है, करीबी रिश्तेदारी है। तो अब हुक्म का मदार कुर्ब कराबत पर होगा कि ये निकाह करवाते हैं गबन फाहिश के साथ, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए जी। आपने क्या कहा था? साहिबैन ने कहा था इसमें शफकत नहीं है, साहिबैन ने कहा था इस निकाह में शफकत नहीं, लिहाजा बाप दादा को विलायत भी नहीं है। इमाम साहब फरमाते हैं नहीं, शफकत है या शफकत नहीं यह पता नहीं चल सकता, क्योंकि हो सकता है कोई और बड़ा फायदा यहां मौजूद हो। जब शफकत का पता नहीं चल सकता तो दलील शफकत के ऊपर हुक्म का मदार हो जाएगा, और दलील शफकत तो यहां मौजूद है, और वह क्या है? कुर्ब कराबत। जबकि बाकी रिश्तेदार जो हैं वहां कुर्ब कराबत यानी दलील शफकत मौजूद नहीं है, लिहाजा वो तो गबन फाहिश के साथ निकाह करवाएंगे नहीं हो सकता, लेकिन बाप और दादा गबन फाहिश के साथ निकाह करवाएंगे तो निकाह हो जाएगा।
ये माना है वह दलील आदिम नाहू फी हक गैर हिमा, और दलील जो है हमने इसको मादूम पाया है बाप दादा के अलावा के हक में, यानी उनमें कुर्ब कराबत नहीं, लिहाजा जब उनमें कुर्ब कराबत नहीं तो वह गबन फाहिश के साथ निकाह नहीं करवा सकते, और बाप और दादा में कुर्ब कराबत मौजूद है तो वो गबन फाहिश के साथ निकाह करवा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है महर में तो कमी हो लेकिन किसी दूसरी चीज का बहुत बड़ा फायदा वहां मौजूद हो। हासिल कलाम फिर समझ लें भाई इस मसले का, मसला यह है बाप और दादा सगीर या सगीरा का निकाह करवाते हैं गबन फाहिश के साथ महर के अंदर, यानी सगीरा का महर होना चाहिए था 2 लाख, बाप और दादा ने 1 लाख मुकरर कर दिया, या सगीर का निकाह करवा रहे हैं किसी लड़की से और उस लड़की का महर तो 1 लाख होना चाहिए था लेकिन इन्होंने उसका महर 2 लाख मुकरर करवा दिया, तो इमाम साहब फरमाते हैं बाप और दादा को इख्तियार है वो गबन फाहिश के साथ निकाह करवा सकते हैं, जबकि साहिबैन फरमाते हैं कि बाप और दादा उनके लिए गबन यसीर तो जायज है गबन फाहिश जायज नहीं। इस पर शुबा हुआ कि शायद साहिबैन के कौल का यह मतलब है कि निकाह हो जाएगा अगर बाप और दादा गबन फाहिश से करवाएंगे तो निकाह हो जाएगा लेकिन वो गबन फाहिश जायज नहीं होगा। साहिब हिदायत ने आपको बतलाया नहीं, साहिबैन के कौल का मतलब यह है कि बाप और दादा गबन फाहिश के साथ निकाह करवाएंगे तो निकाह मुनाकिद ही नहीं होगा। भाई क्यों नहीं मुनाकिद होगा? कहते हैं इसलिए क्योंकि बाप और दादा को यह विलायत हमने दी थी शफकत की वजह से, तो शफकत होगी तो उनको विलायत भी होगी विलायत इजबार, और शफकत नहीं तो विलायत इजबार भी नहीं। लिहाजा जब ये गबन फाहिश के साथ निकाह करवा रहे हैं तो इसमें तो शफकत नहीं है, जब शफकत नहीं है तो इनको विलायत इजबार भी नहीं है, लिहाजा निकाह ही नहीं होगा। बात समझ में आ गई? कहते हैं इसलिए क्योंकि महर के अंदर कमी या बेशी करना इसके अंदर किसी भी एतबार से शफकत नहीं है। जैसे बैअ के अंदर बाप और दादा को सगीर और सगीरा के माल में तसरुफ का हक हासिल है, वो उसके लिए कोई चीज खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं, लेकिन वहां बिल इत्तेफाक वो गबन फाहिश के साथ कोई चीज खरीद और बेच नहीं सकते भाई। तो जैसे बैअ के अंदर बाप और दादा को गबन फाहिश का इख्तियार नहीं, इसी तरह निकाह में भी उनको गबन फाहिश का इख्तियार नहीं होगा। तो बाप और दादा गबन यसीर के साथ कर सकते हैं, और ये गबन यसीर भी कहते हैं सिर्फ बाप और दादा को इख्तियार है, बाकी अगर औलिया निकाह करवाएंगे तो उनको गबन यसीर का इख्तियार भी नहीं, बल्कि उनको महर मिसल के साथ ही निकाह करवाना पड़ेगा। और फिर इमाम साहब की तरफ से जवाब दिया, इमाम साहब फरमाते हैं कि आपने कहा कि इस विलायत का दारोमदार शफकत पर है, शफकत होगी तो विलायत है, शफकत नहीं तो विलायत भी नहीं, और महर कम कर दिया तो शफकत नहीं है। हम कहते हैं नहीं, निकाह के अंदर सिर्फ महर मकसूद नहीं होता औरत के लिए बल्कि और भी मकासिद होते हैं भाई, लिहाजा हो सकता है महर में तो कमी आ गई लेकिन हो सकता है कोई और बड़ा फायदा वहां मौजूद हो जिसकी वजह से उन्होंने निकाह करवाया है। लिहाजा ये जो बाप और दादा ने गबन फाहिश के साथ निकाह करवाया, आपने कहा इसमें शफकत नहीं है, आपने क्या कहा इसमें शफकत नहीं? हम कहते हैं नहीं, इसमें शफकत है या नहीं ये पूरी तरह वाजह नहीं, हो सकता है शफकत हो फिर भी कोई और फायदा हो, तो शफकत का होना या ना होना जाहिर नहीं। जब शफकत अमरे बातनी हो गई यहां पर और उसका पता नहीं चल सकता तो जो शफकत की दलील है उस पर हुक्म का मदार हो जाएगा, और शफकत की दलील क्या थी, किससे पता चला था कि यह शफकत है यहां पर? कुर्ब कराबत की वजह से तो हमने इनको इख्तियार दिया था, तो कुर्ब कराबत जो है उस पर हुक्म का मदार हो जाएगा, और कुर्ब कराबत तो बाप और दादा में मौजूद है लिहाजा इनको ये गबन फाहिश के साथ भी निकाह का इख्तियार होगा, और बाकी औलिया के अंदर कुर्ब कराबत नहीं है लिहाजा उनको गबन फाहिश के साथ भी निकाह का इख्तियार नहीं होगा। और दूसरा, आपने निकाह को बैअ पर कियास किया था, कहते हैं नहीं, बैअ के अंदर सिर्फ मालियत मकसूद होती है और निकाह के अंदर बहुत से मकासिद होते हैं, तो लिहाजा आप निकाह को बैअ पर कियास नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई? आगे देखिए, कहते हैं वमन जव वजब न तहु वही असगीर तुन अबदन औ जव वजब न हु वह असगीर उन अमतन फहुआ जाइजुन। सूरत मसला ये कि बाप या दादा ने सगीर या सगीरा का निकाह गैर कुफ में करवा दिया, तो इमाम साहब फरमाते हैं कि ये बाप और दादा के लिए जायज है। सगीर या सगीरा का निकाह गैर कुफ में करवाना बाप और दादा के लिए जायज है और किसी और वली के लिए ये जायज नहीं है। कहते हैं वह मनजब वजब न तहु वही सगीरत उन, और जिस शख्स ने निकाह करवाया अपनी बेटी का, वही सगीरत उन इस हाल में कि वो सगीरा है यानी नाबालिगा है, किससे निकाह करवाया, आबदन किसी गुलाम से, आबद से गुलाम से गुलाम ही नहीं मुराद के सगीरा का निकाह गुलाम से करवा दिया, मुराद है गैर कुफ, किससे निकाह करवाया गैर कुफ से, और गुलाम का गैर कुफ होना तो जाहिर है क्योंकि गुलाम आजाद का कुफ नहीं होता भाई। तो कहते हैं जिस शख्स ने निकाह करवाया अपनी बेटी का, वही सगीरत उन इस हाल में कि वो सगीरा है, आबदन किसी गुलाम से, औजव वजब न हो वह हुआ सगीर उन, या निकाह करवाया अपने बेटे का वह हुआ सगीर उन इस हाल में कि वो सगीर है यानी नाबालिग है, आमतन किसी बांदी से, फहुआ जायज उन, तो ये जायज है यानी बाप और दादा के लिए। काला रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये काला से मुरा साहिब हिदाया है, साहिब हिदाया रहमतुल्लाह फरमाते हैं, वहादा इंदा अबी हनीफा रहमहुल्लाह तआला अयज़न, ये भी इमाम साहिब के नजदीक है, लिअन्न अल-इराज़ अनिल कफाअति लिमसलहतिन तफूकुहा, इसलिए क्योंकि यहां जो कफाअत से इराज किया गया, कफाअत का ख्याल नहीं रखा बाप दादा ने बल्कि गैर कुफ में निकाह करवाया है, तो ये जो कफाअत से मुंह मोड़ा गया है, कफाअत से आराज किया गया है, ली मसलहतिन, ये किसी ऐसी मसलहत की वजह से होगा, तफूकुहा, जो उस कफाअत से बढ़कर है, किसी और बड़ी मसलहत की वजह से किया होगा, लिहाजा जायज है। व इंदहुमा, और साहिबैन के नजदीक, हुआ ज़ररुन ज़ाहिरुन, ये जाहिरी ज़रर और नुकसान है, गैर कुफ में निकाह करवा रहा है तो इसमें सगीर या सगीरा का नुकसान है जो जाहिर है, ले आदमिल कफाअती, कफात न होने की वजह से, कफात नहीं है तो इनका नुकसान है, फला या जूजू, तो लिहाजा ये जायज नहीं। वल्लाहु आलम, और अल्लाह खूब जानने वाले हैं। दलील समझ में आई क्या? इमाम साहब फरमाते हैं बाप या दादा सगीर या सगीरा का निकाह करवाएं गैर कुफ में तो भी जायज, क्योंकि हो सकता है वहां कोई और मसलहत देखकर उन्होंने निकाह किया हो। और मैंने बताया कि ये बांदी और गुलाम के साथ निकाह का जिक्र है, बांदी और गुलाम ही नहीं मुराद, मुराद गैर कुफ है, तो बाप और दादा गैर कुफ में निकाह करवा सकते हैं, और महर में गबन फाहिश के साथ भी निकाह करवा सकते हैं इमाम साहिब के नजदीक। जबकि साहिबैन जैसे जैसे महर के सिलसिले में कहते हैं बाप और दादा गबन फाहिश के साथ निकाह नहीं करवा सकते, इसी तरह वो कहते हैं बाप और दादा गैर कुफ में भी निकाह नहीं करवा सकते, इसलिए क्योंकि इसमें सगीर और सगीरा का नुकसान है। बात समझ में आ गई। आगे देखिए भाई, फसलुन फिल वकालती बिन निकाही व गैरिहा, ये गैरिहा की हा जमीर राजे है वकालत को, ये फसल है निकाह की वकालत के बयान में, वगैरिहा और वकालत के अलावा और चीजें, और वकालत के अलावा और चीजें जो हैं उनके बारे में। भाई देखो, इस बाब में किसी को निकाह का वकील बनाया जाए, मसलन एक आदमी किसी दूसरे को कहता है आप मेरा फलां जगह निकाह करवा दें, तो देखो इस आदमी ने उस शख्स को वकील बना दिया। इसी तरह इसमें फजूली का निकाह भी आएगा, फजूली मैंने बतलाया गैर मुतअल्लिका आदमी, मसलन मैं अपनी गाड़ी फरोख्त करना चाहता हूं तो मैं अपनी गाड़ी बेच सकता हूं क्योंकि मैं गाड़ी का मालिक हूं, या मैं किसी को वकील बनाता हूं कि आप जाकर मेरी ये गाड़ी फरोख्त कर दें, तो अब ये शख्स मेरा वकील है, ये भी मेरी गाड़ी ले जाकर बेच सकता है, तो मेरी गाड़ी है तो अगर मैं बेचूं तो मैं असील कहलाऊंगा। क्या कहलाऊंगा? असील, यानी जो साहिब इख्तियार होता है, जिसका वो इख्तियार है वो क्या है? असील। और किसी दूसरे को कहा तो वो क्या है? वकील, दूसरे को इख्तियार दे दिया। और अगर एक तीसरा आदमी है वो खुद ही मेरी गाड़ी बेच देता है, वो असील भी नहीं, क्योंकि असील तो मैं हूं, और वकील भी नहीं, मैंने उसे वकील भी नहीं बनाया। अब एक शख्स मेरी गाड़ी फरोख्त कर देता है और फिर मुझे आकर बतलाता है मैंने आपकी गाड़ी जैद को 10 लाख रुपए में फरोख्त कर दी, तो ये शख्स जो गैर मुतअल्लिका है, न असील है न वकील है, ये फजूली कहलाता है। क्या कहलाता है? फजूली, यानी गैर मुतअल्लिका आदमी। तो अब यहां पर फजूली का निकाह भी जिक्र होगा कि कोई गैर मुतअल्लिका आदमी किसी दूसरे का निकाह करवा देता है। यह बात पीछे गुजर चुकी है कि अहनाफ के यहां फजूली भी अगर किसी की तरफ से कोई आकद करवा दे तो वह आकद मुनाकिद हो जाएगा, अलबत्त उस साहिब इख्तियार के या साहिब तसरुफ की इजाजत पर मौकूफ रहेगा। मसलन एक आदमी मेरी गाड़ी फरोख्त करके आ गया खुद ही मुझसे पूछे बगैर, तो वो अकद मुनाकिद तो हुआ अलबत्ता मेरी इजाजत पर मौकूफ है। मैं इजाजत दे दूंगा तो वह अकद नाफिज हो जाएगा, और मैं इजाजत नहीं दूंगा तो वह नाफिज नहीं होगा, बातिल हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो यहां वकालत का भी जिक्र होगा और इसी तरह फजूली या वली किसी का निकाह करवाता है वो भी जिक्र होगा। तो यह फसल है, फसलुन फिल वकालत बिन निकाह ही वगैरिहा, यह फसल है वकालत बिन निकाह के बारे में और वकालत बिन निकाह के अलावा में, यानी फजूली वगैरह के निकाह या वली का निकाह जो है वो भी इसमें जिक्र होगा। आगे देखिए, कहते हैं वयजूज लिबनि अल्अम्मी अन युज़व्विज बिन्त अम्मिही मिन नफ्सिही वकाल ज़ुफ़र रहिमहुल्लाह ला यजूज। भाई याद रखिए, यहां वो मसला जिक्र कर रहे हैं जब एक ही शख्स दोनों जानिब से निकाह का मुतवल्ली हो जाए। यह मसला जहां किताबुन निकाह हमने शुरू की थी तो इब्तिदाई दो तीन सत्रों के अंदर ही यह मसला जिक्र हुआ था, एक ही शख्स निकाह की दोनों जानिब का मुतवल्ली और जिम्मेदार बन सकता है निकाह का, लेकिन बैअ के अंदर एक ही शख्स दोनों जानिब का मुतवल्ली नहीं बन सकता। एक ही शख्स निकाह का मुतवल्ली बनेगा, मसलन देखो जैद है, जैद लड़के वालों ने भी जैद को अपना वकील बना दिया कि आप हमारे लड़के का फलां जगह निकाह करवा दें, और लड़की वालों ने भी इसी जैद ही को वकील बना दिया अपना कि आप उस लड़के से इस लड़की का निकाह करवा दें। तो अब देखो जैद दोनों तरफ निकाह का मुतवल्ली हो गया, लड़के वालों की तरफ से भी और लड़की वालों की तरफ से मुतवल्ली यानी जिम्मेदार हो गया। अब जैद दो गवाहों को बिठाता है और उन दो गवाहों के सामने जैद कहता है मैंने फुलां लड़के का फुलां लड़की से निकाह करवा दिया। याद रखो निकाह मुनाकिद हो गया। जैद का सिर्फ यह कहना मैंने फुलां का फुलानी से निकाह करवा दिया दो गवाहों के सामने, यह निकाह मुनाकिद हो गया। यह जो जैद का कलाम है यह ईजाब और कबूल दोनों के कायम मकाम है, उसने ईजाब और कबूल अलग अलग नहीं किया, तवज्जो है। तो जैद का कौल ईजाब और कबूल दोनों के कायम मकाम हो गया, यह दो कलामों के दर्जे में हुआ। वजह यह कि लड़की वालों ने भी इसको वकील बनाया है, लड़के वालों ने भी इसको वकील बनाया है, तो इसका कलाम दो कलामों के दर्जे में है। गोया ये ईजाब भी है और कबूल भी है और दो गवाह भी मौजूद हैं, और दो गवाहों के सामने जब ये कलाम पाया गया तो लिहाजा निकाह मुनक़िद हो गया। अब वो आपस में मियां बीवी बन गए, जिनका निकाह करवाया गया वो क्या बन गए, मियां बीवी बन गए। सूरत समझ में आ गई। तो देखो एक ही शख्स निकाह की दोनों जानिब का मुतवल्ली और जिम्मेदार बन गया, और दूसरी तरफ बैअ के अंदर ऐसा जायज नहीं है। मैं अपनी गाड़ी फरोख्त करना चाहता हूं, मैंने जैद को वकील बना दिया कि आप मेरी ये गाड़ी फरोख्त कर दें। अमर एक गाड़ी खरीदना चाहता था, उसने भी जैद ही को वकील बनाया कि मैं आपको वकील बनाता हूं, मेरे लिए गाड़ी खरीद के ले आओ। और जैद ने फिर क्या कहा, मैंने फलां की गाड़ी फलां को बेच दी, क्योंकि वो दोनों तरफ का मुतवल्ली है। कहते हैं नहीं, बैअ के अंदर एक आदमी दोनों तरफ का मुतवल्ली नहीं हो सकता और उसके कौल से वो अकद मुनाकिद नहीं होगा। भाई बात समझ में आ रही है, और दलील इसकी दलील अभी आगे साहिब हिदायत भी बयान करेंगे, वहां मैं तफसील बयान करता हूं। यहां तक बात समझ में आ गई। हासिल कलाम क्या कि निकाह में एक ही शख्स दोनों जानिब का मुतवल्ली हो सकता है, लेकिन बैअ वगैरह के अंदर एक शख्स दोनों जानिब का मुतवल्ली नहीं हो सकता। देखिए भाई, कहते हैं वयजूज़ु लिबनि अल-अम्मी अन युज़व्विज बिन्त अम्मिही मिन नफ्सिह। सूरत मसला यह कि एक सगीरा है, उसका बाप भी फौत हो चुका, दादा भी फौत हो चुका। अब उस विलायत उसके भाइयों के पास आएगी या भाइयों की औलाद के पास आएगी, लेकिन उसका कोई बालिग भाई भी नहीं और भाइयों की कोई बालिग औलाद भी नहीं है। तो अब यह विलायत मिल गई चचा को, लेकिन चचा का भी इंतकाल हो चुका। अब चचा का बेटा जिंदा है तो उसको विलायत मिल गई, और चचा के बेटे का अपने भतीजी से निकाह जायज है। लिहाजा ये जो चचा का बेटा जो वली है, इसको विलायत इजबार हासिल है, आसाबात में से है ना, तो इसको विलायत इजबार मिल गई, और आसाबात तो करीब वाले हैं नहीं। ये उस सगीरा का निकाह अपने साथ करवाता है। अब देखो किसके साथ निकाह करवा रहा है, अपने साथ, तो खुद हुआ ये असील। और सगीरा का निकाह करवा रहा है, सगीरा के लिए यह क्या है? वली। तवज्जो है। अब यह दो गवाहों को बिठाता है और उनके सामने कहता है कि वो जो फुलानी है, वो मेरे चचा की बेटी सगीरा, उसका मैं अपने साथ निकाह करता हूं। बस ये कहते ही निकाह हो गया, ये कहते ही निकाह हो गया भाई। हां, वो सगीरा को फिर इख्तियार मिलेगा, जब वो बालिगा होगी तो उसको खियारे बुलुग मिलेगा, वो इसको कबूल करती है या रद्द करती है। तो अब एक ही शख्स निकाह का मुतवल्ली हुआ और क्या क्या है, वो असील है और वली है, तवज्जो है, तो ये निकाह हो जाएगा इंदल अहनाफ। जबकि इमाम जुफर रहमतुल्लाह फरमाते हैं नहीं, एक ही शख्स निकाह की दोनों जानिब का मुतवल्ली नहीं हो सकता। देखिए भाई किताब पर कहते हैं भाई अजूजुल इब्निल अम्मी, और चचा के बेटे के लिए जायज है, अयुजवीजा बिनता अम्मी ही, कि वो निकाह करवा दे अपने चचा की बेटी का, मिन नफसी ही अपने साथ। वकाल जुफर रहमहुल्लाहु ला यजूजु, और इमाम जुफर रहमहुल्लाह फरमाते हैं ये जायज नहीं। भाई एक ही शख्स निकाह की दोनों जानिब का मुतवल्ली हुआ, किस तरह? एक मैंने मिसाल जिक्र की, दोनों तरफ से वकील था, दूसरी मिसाल किताब में आ गई। कैसे? कि एक ही शख्स निकाह की दोनों जानिब का मुतवल्ली है, वो असील भी है और वली भी है। अब तीसरी सूरत आ गई, कहते हैं वह ईदा अजीनतिल मर अतुल रजुली अयुजवीजहा मिन नफसी ही फाकदा भी हजरत शाहिदैनी जाजा। तीसरी सूरत इधर देखिए, एक औरत है, उसने एक आदमी से कहा कि तुम अपने साथ मेरा निकाह कर दो, यानी औरत ने उसको वकील बना दिया। और किसके साथ निकाह करवाने का वकील बनाया? अपने साथ, वो वकील ही अपने साथ निकाह करवाएगा। अब ये वकील जो है, जो औरत की तरफ से वकील है और अपने लिए असील है, अपने साथ निकाह करवा रहा है, ये दो गवाहों के सामने कहता है कि मैंने फुलानी का अपने साथ निकाह कर दिया। याद रखो, निकाह मुनाकिद हो गया। ये एक ही शख्स निकाह की दोनों जानिब का मुतवल्ली हो गया और अपने लिए क्या है? असील, अपने साथ निकाह करवा रहा है, और औरत के लिए क्या है? वकील। तो पिछले मसले में क्या था? एक ही शख्स मुतवल्ली था, अपने लिए क्या था? असील, और सगीरा के लिए क्या था? वली। और ये शख्स अपने साथ निकाह करवा रहा है, ये दूसरा शख्स, ये अपने लिए क्या है? असील, दूसरे के लिए क्या है? वकील। तो देखो, एक ही शख्स दोनों जानिब निकाह का मुतवल्ली हुआ। कहते हैं वह ईदा अजीनतिल मर अतुल रजुली, और जब इजाजत दी किसी औरत ने किसी आदमी को, अयुजव वी जहा मिन नफसी ही, कि वो उस औरत का निकाह करवा दे, मिन नफसी ही अपनी जात के साथ, फाकदा भी हजरती शाहिदैनी, तो उस आदमी ने अकद करवा दिया दो गवाहों की मौजूदगी में, जाजा, तो ये जायज है। وقال زفر والشافعي رحمهم الله لا يجوز، امام زفر اور امام شافعی رحمهم الله فرماتے ہیں جائز نہیں، وہ فرماتے ہیں نہیں، ایک شخص نکاح کی دونوں جانب کا متولی نہیں ہو سکتا، لهما، ان کی دلیل یہ ہے کہ ان الواحد لا يتصور ان يكون مملكا ومتملكا، مملک، ملک يملك تملیک کا معنی ہے دوسرے کو مالک بنانا، तो मुमल्लिक इसमें फाइल है, दूसरे को मालिक बनाने वाला, और तमल्लुक का माना होता है खुद मालिक बनना, तो मुतमल्लिक का माना है खुद मालिक बनना, मुमल्लिक का माना दूसरे को मालिक बनाने वाला, और मुतमल्लिक का माना खुद मालिक बनने वाला। लहुमा, इमाम जुफर और इमाम शाफई रहिमहुमल्ला की दलील यह है कि अन्नल वाहिद ला युतसव्वरु अन यकून मुमल्लिकन व मुतमल्लिका, कि एक ही शख्स, उसके बारे में यह तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि मुमल्लिक, वो मालिक बनाने वाला भी हो, व मुतमल्लिकन, और मालिक बनने वाला भी हो। मालिक बनाने वाला और होता है और मालिक बनने वाला और होता है। मसलन मेरे पास ये किताब है, मैं आपको किताब देता हूं कि लीजिए, मेरी तरफ से तोहफे के तौर पर ये किताब आपकी हो गई, तो मैं हुआ मुमल्लिक, मालिक बनाने वाला, और आप क्या हुए? मुतमल्लिक, मालिक बनने वाले। तो मालिक बनाने वाला और होता है और मालिक बनने वाला और होता है। बात समझ में आ गई। एक ही शख्स मुमल्लिक और मुतमल्लिक नहीं हो सकता। याद रखो ये तफसील, ये दलील और ये तफसील, जहां किताबों निकाह हमने शुरू की थी वहां दूसरी या तीसरी सतर के अंदर ये मसला आया था और मैंने कुछ तफसील वहां बयान की थी।
मसला यह था कि बैअ के अंदर एक शख्स दोनों जानिब का मुतवल्ली नहीं हो सकता, लेकिन निकाह में एक शख्स दोनों जानिब का मुतवल्ली हो सकता है। वजह यह कि बैअ जो है बैअ के अंदर एक शख्स दूसरे को एक चीज का मालिक बनाता है। मसलन आपके पास एक किताब है, मैं आपसे खरीदता हूं, मैं आपसे कहता हूं यह किताब मैंने आपसे 100 रुपए में खरीद ली और आपने कहा कि मुझे कबूल है। जैसे ही आपने कबूल है कहा, साथ ही मैं इस किताब का मालिक बन गया। तो देखो, आप हुए मुमल्लिक, मालिक बनाने वाले, और मैं हुआ मुतमल्लिक, यानी मालिक बनने वाला। तो बैअ में क्या किया जाता है, दूसरे को किसी चीज का मालिक बनाया जाता है, और मालिक बनाने वाला हमेशा और जात होती है और मालिक बनने वाली और जात होती है। एक ही शख्स मुमल्लिक भी हो और मुतमल्लिक भी हो, ऐसा नहीं हो सकता भाई। ये इसी को दूसरे लफ्जों में, एक है मुतालिब, एक है मुतालब। मसलन आपके साथ मैंने बैअ कर ली किताब की, तो अब मैं आपसे मुतालबा करूंगा कि लाओ भाई ये किताब, मैं मालिक बन गया हूं, मेरे हवाले करो। तो देखो, मैं हुआ मुतालिब, और किससे मुतालबा किया, बेचने वाले से, वो हुआ मुतालब। तो हमेशा मुतालबा करने वाला वो और होता है, और जिससे मुतालबा किया जाए वो और होता है। एक ही शख्स मुतालिब और मुतालब नहीं हो सकता। या मसलन बेचने वाला मुझसे मुतालबा करता है कि भाई किताब आपने खरीद ली, अब लाइए समन मेरे हवाले कर दीजिए, तो वो हुआ मुतालिब, समन का मुतालबा करने वाला, और मैं क्या हुआ, मुतालब बन गया जिससे मुतालबा किया जा रहा है। पहले मैं क्या था, मैं मबीए का मुतालबा कर रहा था, मैं था मुतालिब और बेचने वाला था मुतालब। और समन के एतबार से देखें तो वो अब समन का मुझसे मुतालबा कर रहा है, तो बेचने वाला क्या हुआ, मुतालिब, और खरीदने वाला क्या हुआ, मुतालब। तो दलील चल रही है इमाम जुफर और इमाम शाफई रहमहुल्ला की। वो फरमाते हैं, जब दो आदमियों के दरमियान एक आकद होता है, तो एक शख्स मसलन एक चीज का दूसरे को मालिक बनाता है, तो मालिक बनाने वाला हमेशा वो और होता है, और मालिक बनने वाला वो और होता है। एक ही शख्स मुमल्लिक और मुतमल्लिक नहीं हो सकते, या यूं कहो एक ही शख्स मुतालिब और मुतालब नहीं हो सकते। लिहाजा एक ही शख्स निकाह की दोनों जानिब का मुतवल्ली नहीं हो सकता, वो कहते हैं। अच्छा जी, देखिए भाई किताब पर, वकाल जुफर व शाफी रहमहुमल्लाहु ला यजूज़ु। इमाम जुफर और इमाम शाफी रहमहुमल्ला फरमाते हैं ये जायज नहीं। लहुमा, उनकी दलील यह है कि अन्नल वाहिद ला युतसव्वरु अन यकून मुमल्लिकन व मुतमल्लिका, कि एक ही शख्स के बारे में यह तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि वो मालिक बनाने वाला भी हो और मालिक बनने वाला भी हो। कमा फिल बैअ, जैसे किसके अंदर है, बैअ के अंदर है, कि एक ही आदमी जो है वो मुमल्लिक और मुतमल्लिक नहीं हो सकता। इल्ला अन्ना शाफिई रहमहुल्लाहु यकूलु, मगर इमाम शाफी रहमहुल्ला फरमाते हैं, फिल वली ये जरूरतुन, वली के अंदर तो जरूरत है, लिहाजा वो जो चचाजाद बेटे ने अपनी भतीजी से निकाह किया था, वहां इमाम शाफी रहमहुल्ला फरमाते हैं वहां चूंकि जरूरत थी और कोई जिम्मेदार है ही नहीं इस मसले का, वो खुद ही जिम्मेदार है, लिहाजा वहां निकाह हो जाएगा। लेकिन वकील के अंदर एक ही शख्स दोनों जानिब का मुतवल्ली हो जाए, यहां कोई जरूरत नहीं है। लिहाजा एक औरत एक आदमी से निकाह करना चाहती है, उसी आदमी को वकील बनाने की क्या जरूरत है, किसी और आदमी को वकील बना दो। कहते हैं यकूल फिल वली ये जरूरत, इमाम शाफी रहमहुल्ला फरमाते हैं कि वली के अंदर जरूरत है, अन्नहू ला यतवल्लाहु सिवाहु, क्योंकि उसके अलावा कोई और उसका मुतवल्ली नहीं है, कोई और उसका जिम्मेदार नहीं है। इमाम शाफी रहमहुल्ला फरमाते हैं, देखो दो सूरतें जिक्र हुई पीछे, एक सूरत क्या थी, चचाजाद ने अपनी भतीजे से निकाह किया, चचाजाद खुद ही मुतवल्ली हो गया, लेकिन अपने लिए वो असील था और सगीरा के लिए वली था, तो यहां वो वली था, यहां तो जरूरत है, उसके अलावा और कोई इसका जिम्मेदार ही नहीं, लिहाजा ये निकाह तो इमाम शाफी रहमहुल्ला फरमाते हैं ठीक है हो जाएगा। लेकिन अगर एक औरत एक आदमी से निकाह करना चाहती है और उसी आदमी को वकील बनाती है अपने साथ निकाह का, तो एक ही शख्स दोनों जानिब निकाह का मुतवल्ली हो जाए, इमाम शाफी रहमहुल्ला फरमाते हैं नहीं, यहां कोई जरूरत नहीं,
यहां एक ही शख्स दोनों जानिब का निकाह का मुतवल्ली होने की कोई हाजत और जरूरत नहीं, यह औरत किसी और को वकील बना दे, वो इस आदमी के साथ इसका निकाह करवा दे। तवज्जो है, वली के अंदर तो हाजत और जरूरत है, वहां और कोई जिम्मेदार नहीं, लिहाजा वो दोनों जानिब निकाह का मुतवल्ली हो सकता है जब अपने साथ निकाह करवाए सगीरा का, लेकिन वकील के अंदर कोई हाजत और जरूरत नहीं, लिहाजा वकील के अंदर एक शख्स दोनों जानिब का मुतवल्ली नहीं हो सकता। जबकि इमाम जुफर तो दोनों सूरतों में फरमाते हैं, दोनों सूरतों में फरमाते हैं कि दोनों जगह ही निकाह नहीं होगा, क्योंकि खराबी क्या लाजिम आएगी, एक ही शख्स मुमल्लिक भी बन जाएगा और एक ही शख्स मुतमल्लिक भी बन जाएगा, और यह तो जायज नहीं। इमाम शाफी हमला भी यही फरमाते हैं, एक ही शख्स मुमल्लिक भी बन रहा है, मुतमल्लिक भी बन रहा है, लिहाजा इसकी इजाजत नहीं, सिर्फ वली वली सूरत में इजाजत है जरूरत और हाजत की वजह से। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं इल्ला अन्ना शाफिया रहमहुल्लाह यकूलु फिल वली जरूरत, मगर यह कि इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि वली के अंदर जरूरत है, लिअन्नहु ला यतवल्लाहु सिवाहु, इसलिए क्योंकि वली के अलावा और कोई उसका मुतवल्ली नहीं है, कोई और उसका जिम्मेदार नहीं है, वला जरूरत फिल वकीली, और वकील में कोई जरूरत नहीं, लिहाजा वहां एक शख्स दो जानिब का मुतवल्ली नहीं हो सकता। वलाना, अब हमारी दलील आई, हम हमारी दलील याद रखो, हम कहते हैं कि निकाह के अंदर एक शख्स दोनों जानिब का मुतवल्ली हो सकता है। वजह यह कि निकाह के अंदर जो वकील होता है वो सिर्फ सफीर है, वो पैगाम रसा है, पैगाम पहुंचाने वाला है, वो सिर्फ अल्फाज को अदा करने वाला है, इस आकद के जो हुकूक हैं उनका ताल्लुक वकील से नहीं है भाई, उनका ताल्लुक वकील से नहीं है। मसलन देखो, जब निकाह हो जाए तो लड़का मुतालबा कर सकता है कि अब मेरी बीवी मेरे हवाले की जाए, मेरा निकाह हो गया, और इसी तरह लड़की मुतालबा कर सकती है कि निकाह हो गया अब मेरा महर मेरे हवाले किया जाए। तो याद रखो, ये जो अक़्द निकाह है इसमें ये जो हुकूक हैं इनका ताल्लुक वकील से नहीं है, वकील सिर्फ पैगाम पहुंचाने वाला है, हुकूक का ताल्लुक वकील से नहीं होता। जबकि बैअ के अंदर हुकूक आकद का ताल्लुक वकील से होता है। मसलन मैंने एक आदमी को भेजा कि जाओ जाकर मेरे लिए एक गाड़ी खरीद कर ले आओ, वो गया और उसने मेरे लिए एक गाड़ी खरीद ली, तो याद रखो अब इस गाड़ी का मुतालबा करना बेचने वाले से कि लाओ गाड़ी मेरे हवाले करो, ये वकील ही मुतालबा करेगा, मैं जाकर मुतालबा नहीं कर सकता। मैंने वकील को भेजा जाओ जाकर मेरे लिए गाड़ी खरीद लो, उसने जाकर आकद तो कर लिया, अभी गाड़ी वसूल नहीं की, मैं चला गया और मैंने जाकर उनसे कहा कि भाई मेरे वकील ने आपसे गाड़ी खरीदी थी, लाओ मेरी गाड़ी मेरे हवाले करो, तो वो मुझे कहेंगे भाई आपके साथ तो हमारा आकद नहीं हुआ, हमारा आकद तो आपके वकील के साथ हुआ है, वो आकर हमसे मुतालबा कर सकता है, आप हमसे गाड़ी वगैरह का मुतालबा नहीं कर सकते। तो बैअ के अंदर जो हुकूक का ताल्लुक होता है यानी मुतालबा करना या वसूल करना, ये वकील का काम होता है, यानी आकद के हुकूक वकील से मुतालिक होते हैं। जबकि निकाह के अंदर हुकूक का ताल्लुक वकील से नहीं होता, वकील सिर्फ पैगाम पहुंचाने वाला है। मसलन देखो, निकाह के बाद लड़का बीवी का मुतालबा कर सकता है कि मेरा निकाह हो गया, मेरी बीवी मेरे हवाले की जाए, और निकाह के बाद लड़की महर का मुतालबा कर सकती है कि मेरा निकाह हो गया है, लाओ अब मेरा महर मेरे हवाले करो। तो ये हुकूक आकद हैं, क्या हैं ये जो निकाह के हुकूक है ना, कि लड़का किसका मुतालबा कर सकता है, बीवी का, और लड़की किसका मुतालबा कर सकती है, महर का। तो याद रखो ये जो हुकूक आकद है निकाह के अंदर, ये वकील से मुतालिक नहीं, वकील इनका मुतालबा नहीं कर सकता। लड़के का वकील कहे लाओ भाई अब लड़की हमारे हवाले करो, लड़के का निकाह हो गया, नहीं, वकील मुतालबा नहीं कर सकता, वो लड़का ही मुतालबा कर सकता है जिसका निकाह हुआ है। और नीज लड़की का वकील मुतालबा कर रहा है कि लाओ भाई महर अब हमारे हवाले करो, नहीं भाई, लड़की का वकील यह मुतालबा नहीं कर सकता, वो लड़की ही मुतालबा कर सकती है। तवज्जो है, तो निकाह के अंदर हुकूक आकद का ताल्लुक वकील से नहीं होता, वकील सिर्फ पैगाम पहुंचाने वाला है, और जबकि बैअ के अंदर हुकूक आकद का ताल्लुक वकील से होता है, मुतालबा करना या चीज वसूल करना या पैसे अदा करना यह सारा वकील ही के जिम्मे होता है। बात समझ में आ गई। चुनांचे इसीलिए आप देखते हैं जब किसी आदमी को आप वकील बनाते हैं बैउ शिरा के लिए कि जाकर मेरे लिए गाड़ी खरीद लाओ, तो वकील जाकर आपका नाम नहीं जिक्र करता कि मैं फुलां के लिए गाड़ी खरीदना चाहता हूं, नहीं, वो खुद ही जाएगा गाड़ी खरीदेगा, मेरा नाम भी जिक्र नहीं करेगा और लाकर फिर मुझे दे देगा। जबकि निकाह के अंदर वकील बाकायदा नाम जिक्र करते हैं कि मैं फुलां का निकाह करवाता हूं फुलानी के साथ। देखो उनके मुवक्किलों के नाम जिक्र किए जा रहे हैं, तो निकाह में मुवक्किल के नाम जिक्र किए जाते हैं और बया में मुवक्किल का नाम वगैरह जिक्र नहीं किया जाता। बात समझ में आ गई? तो हासिल कलाम क्या, हुकूक अकद का ताल्लुक बया में किससे होता है, वकील से। वो जो अकद करने वाले वकील हैं वो है मुतालिब और मुतालब, जबकि निकाह के अंदर वकील मुतालिब और मुतालब नहीं, वो सिर्फ पैगाम पहुंचा रहे हैं। बात समझ में आ गई? तो हमारी दलील चल रही थी, हमने फर्क बयान कर दिया कि अक़्द निकाह में और अक़्द बया में फर्क है। अक़्द बया में जो है वो हुकूक अक़्द का ताल्लुक वकील से होता है, वो वकील मुतालिब या मुतालब बनेगा, जबकि निकाह के अंदर हुकूक अक़्द का ताल्लुक मुवक्किल से होता है, वकील से नहीं। तो वकील मुतालिब और मुतालब नहीं बनेगा, वो सिर्फ पैगाम रसा है। तो दो आदमियों की तरफ से पैगाम रसा बनने में तो कोई मुनाफात नहीं है, वो दोनों की तरफ से सफीर बन सकता है। निकाह के अंदर एक शख्स दोनों तरफ से सफीर बन सकता है, और जबकि बया के अंदर तो हुकूक अकद चूंकि वकील से मुतालिक होते हैं, लिहाजा एक ही शख्स दोनों तरफ का मुतवल्ली नहीं बन सकता। बात समझ में आ गई? देखिए अब साहिब हिदायत इसको और बेहतर अल्फाज में जिक्र फरमाएंगे। वलना, और हमारी दलील यह है कि अन्नल वकील फिन निकाह मुअब्बिरुन व सफीरुन, के वकील जो होता है निकाह के अंदर मुअब्बिरुन व सफीरुन। अब्बरा युअब्बिरु ताबीर का माना है अदा करना यानी अल्फाज बोलना, और सफीर का माना है पैगाम रसा। कि जो वकील होता है निकाह में यह मुअब्बिर है यानी ताबीर करने वाला है, अल्फाज को जुबान से अदा करने वाला है, और वह सफीरुन और पैगाम पहुंचाने वाला है, यानी हुकूक का ताल्लुक इससे नहीं, मुतालिब और मुतालब ये नहीं, मुमल्लिक और मुतमल्लिक ये नहीं, ये सिर्फ सफीर है। तवज्जो है? वह तमानु फिल हुकूक दून ताबीर, और तमानु यानी मुमानात और मुनाफात फिल हुकूक हुकूक में होती है, दून ताबीर, ताबीर यानी अल्फाज अदा करने में नहीं। भाई देखो दोनों तरफ से जब वकील है निकाह के अंदर तो वो सिर्फ अल्फाज दोनों की तरफ से अदा कर रहे हैं, हुकूक का ताल्लुक इनसे नहीं। लिहाजा एक ही शख्स दोनों की तरफ से वकील बन जाए, उसने अल्फाज ही अदा करने, मैंने फुलानी का फुलां से निकाह कर दिया, हुकूक का ताल्लुक है ही नहीं, इसे ये मुतालिब और मुतालब बन ही नहीं रहा। अगर ये मुतालिब और मुतालब बनता तो फिर यह जायज नहीं था, लेकिन यह मुतालिब और मुतालब है ही नहीं, यह सिर्फ अल्फाज अदा कर रहा है। जबकि बया के अंदर एक ही आदमी अगर दोनों तरफ का मुतवल्ली बन जाएगा तो वो तो मुतालिब भी बन गया, मुतालब भी बन गया। मसलन बीए का मुतालिब मुतालबा भी ये कर रहा है, और किससे कर रहा है, अपने आप से ही कर रहा है। भाई एक ही आदमी मुतालिब भी हुआ मुतालिब भी हुआ ये तो नहीं हो सकता, या एक ही आदमी मुमल्लिक और मुतमल्लिक बन गया ये तो नहीं हो सकता। तो अल्फाज को अदा करने में और सफीर बनने में मुनाफात नहीं है, सफीर बन सकता है दोनों तरफ से। हां हुकूक के अंदर मुनाफात है कि एक ही शख्स मुमल्लिक और मुतमल्लिक नहीं बन सकता, मुतालिब और मुतालब नहीं बन सकता। तवज्जो है? तो कहते हैं वत्तमान उफिल हुकूक दून ताबीरी, और मुनाफात जो है वो हुकूक में होती है, दून ताबीर, ताबीर यानी अल्फाज को अदा करने में मुनाफात नहीं, एक ही आदमी दोनों की तरफ से अल्फाज अदा कर सकता है। वला तर्जिउल हुकूक इलैही, और ये जो वकील फिन निकाह है इस हुकूक निकाह इसकी तरफ नहीं लौटते, बिखिलाफिल बैय, बखिलाफ बैय के, लिअन्नहु मुबाशिरुन, क्योंकि बैय के अंदर जो वकील होता है मुबाशिर, वो उस अकद को सरंजाम देने वाला है। हत्ता रजअतिल हुकूक इलैही, यहां तक कि हुकूक भी उसी की तरफ लौटते हैं, वो मुतालिब या मुतालब वकील ही होगा, कोई और नहीं हो सकता। वह इसा तवल्ला तरफैही, भाई ये अब वही बात बयान करने लगे, मैंने क्या बताया एक ही शख्स दोनों जानिब निकाह का मुतवल्ली हो सकता है। जब दोनों तरफ से निकाह का मुतवल्ली हो गया, अब दो गवाहों के सामने वो क्या कहता है, मैंने फुलानी का फुलां से निकाह कर दिया, बस उसका ये एक ही कलाम, ये ईजाब और कबूल दोनों के कायम मकाम हो गया, अलग अलग ईजाब और कबूल करने की भी हाजत नहीं। तो कहते हैं वह इदा तवल्ला तरफैही, और जब एक शख्स मुतवल्ली हो गया तरफैही निकाह की दोनों जानिब का,
फकौलुहू, तो उसका यह कहना जवज तू, मैंने निकाह कर दिया यानी फुला का फुलानी से। यह तजम मनुष्यतरैन, याद रखो शतर का माना है आधा और निसफ, शतरुष किसी चीज का आधा हिस्सा, किसी चीज का निसफ, तो निसफ को क्या कहते हैं शतुरुन। इसी तरह शतुरुन का माना जूस के भी हैं, तो यहां जूस का माना कर लें, क्या तर्जमा कर लें जूस। देखो आकद के दो जूस होते हैं, एक ईजाब और एक कबूल। ईजाब और कबूल दोनों होंगे तो आकद पाया जाएगा, सिर्फ ईजाब हो तो आकद नहीं हो सकता। तो कहते हैं फकौलुहू ज़व्वजतु, तो ये वकील जो दोनों तरफ का मुतवल्ली है, इसका ज़व्वजतु कहना यतज़म्मनु शतरैनि, ये निकाह के दोनों जूजों को मुतज़म्मिन है, अकद के अकद के दोनों जूज यानी इजाब और कबूल को मुतज़म्मिन है। वला यहताजु इलल कबूली, और ये कबूल का मोहताज नहीं, ये इजाब और कबूल दोनों पर मुश्तमिल है, दोनों इसी के अंदर आ गए। बात समझ में आ गई। हासिल कलाम क्या कि इमाम शाफी और इमाम जुफर रहमतुल्लाह फरमाते हैं एक ही शख्स निकाह की दोनों जानिब का मुतवल्ली नहीं हो सकता। वजह यह कि एक शख्स मुमल्लिक है तो दूसरा मुतमल्लिक है। एक ही आदमी मुमल्लिक भी हो जाए और मुतमल्लिक भी हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तवज्जो है, लेकिन आपके जहन में भाई एक इश्काल आ सकता है, फिर समझ लें बात को। आपके जहन में इश्काल आ सकता है, एक ही शख्स मुमल्लिक भी हो सकता है और मुतमल्लिक भी हो सकता है। मसलन किस तरह, देखो देखो, मसलन मैंने आपको किताब दी, मैंने कहा यह किताब मेरी तरफ से तोहफा है, तो मैं क्या हुआ मुमल्लिक, मालिक बनाने वाला, और आप क्या हुए मुतमल्लिक। थोड़ी देर बाद फिर आप वो किताब उठाते हैं और मुझे देते हैं और कहते हैं यह किताब अब मेरी तरफ से आपकी हुई, तो अब आप क्या बन गए मुमल्लिक और मैं क्या बन गया मुतमल्लिक, मालिक बनने वाला। तो देखो उसी किताब के एतबार से पहले मैं क्या था मुमल्लिक, अब क्या हूं मुतमल्लिक, तो एक ही आदमी मुमल्लिक भी हो गया और मुतमल्लिक भी हो गया। तो जवाब ये कि भाई चीज भी एक हो और जमाना भी एक हो, एक ही वक्त के अंदर मैं मुमल्लिक भी हूं और मुतमल्लिक भी हूं, एक ही चीज के एतबार से ऐसा नहीं हो सकता। पहले एक जमाने के अंदर मैं जब मैं किताब आपको दे रहा था मैं उस वक्त सिर्फ मुमल्लिक था जी। और अब दूसरे जमाने में जब आप वो चीज मुझे वापस दे रहे हैं तो अब मैं क्या हूं मुतम, तो एक ही चीज के एतबार से एक ही जमाने के अंदर एक ही शख्स मुमल्लिक भी हो जाए और मुतमल्लिक भी हो जाए यह नहीं हो सकता। हां चीज बदल जाए या जमाना बदल जाए फिर एक शख्स मुमल्लिक और मुतमल्लिक हो सकता है। बात समझ में आ गई। तो दलील चल रही थी इमाम जुफर और इमाम शाफी रहमतुल्लाह की, वो फरमाते हैं एक ही शख्स मुमल्लिक और मुतमल्लिक नहीं हो सकता, जैसे बैअ के अंदर है। हम कहते हैं निकाह के अंदर जो वकील होता है वो सिर्फ पैगाम पहुंचाने वाला है, सफीर है, वो सिर्फ अल्फाज को जुबान से अदा कर रहा है, हुकूक अकद का ताल्लुक उससे नहीं है। और हुकूक के अंदर मुनाफात हो सकती है, यानी एक ही शख्स मुतालिब और मुतालब बने तो फिर खराबी लाजिम आएगी, एक ही शख्स मुमल्लिक और मुतमल्लिक बने फिर खराबी लाजिम आएगी, लेकिन निकाह के अंदर तो वो सिर्फ मुआब्बिर है, ताबीर कर रहा है, वो तो मुमल्लिक और मुतमल्लिक है ही नहीं, वो तो मुतालिब और मुतालब है ही नहीं। जबकि बैअ के अंदर हुकूक अकद का ताल्लुक वकील से होता है, वो वकील जो है वो मुमल्लिक या मुतमल्लिक बनता है, लिहाजा एक ही शख्स मुमल्लिक या मुतमल्लिक बैअ के अंदर नहीं हो सकता। भाई बात समझ में आ गई। और फिर इन्होंने आपको यह भी बतलाया कि जब एक ही शख्स दोनों तरफ से निकाह का मुतवल्ली हो जाए तो उसका कलाम दोनों के कायम मकाम हो जाता है, लिहाजा वहां अलग से कबूल कहने की जरूरत नहीं। लिहाजा वो चचा के बेटे ने अपनी भतीजी से निकाह करते वक्त सिर्फ इतना कहा दो गवाहों के सामने कि मैंने फुलानी अपनी भतीजी से अपना निकाह कर दिया, तो इस निकाह मुनाकिद हो गया। बात समझ में आ गई, वहां किसी कबूल वगैरह की जरूरत नहीं है। यहां तक हल हो गया, बात समझ में आ गई। भाई यहां एतराज होता है, एतराज ये कि साहिब हिदाया ने आपको बतलाया कि इमाम शाफई रहमहुल्ला फरमाते हैं कि वली के मसले में चूंकि जरूरत है, क्योंकि वली ही निकाह का जिम्मेदार है, वही सगीरा का वली है और कोई वली नहीं है, तो लिहाजा वली के वाले मसले में एक ही शख्स दोनों जानिब का मुतवल्ली हो सकता है। वो जो चचाजाद बेटे ने अपनी भतीजी से निकाह किया था तो वो चचाजाद बेटा अपना निकाह कर रहा है वो है असील, और किससे कर रहा है? सगीरा से, और सगीरा के लिए वो वली है। तो एक ही शख्स असील भी हुआ और वली भी हुआ, दोनों जानिब का मुतवल्ली हो गया। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं वली के अंदर चूंकि जरूरत है इसलिए जरूरत की वजह से इजाजत होगी, बाकी जगह इसकी इजाजत नहीं होगी, वकील वाले मसले में इसकी इजाजत नहीं। इस पर इश्काल होता है कि ऐ साहिबे हिदाया, आपने हमें पीछे बताया था कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक तो विलायत इजबार चचा के बेटे को मिलती नहीं है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक विलायत इजबार सिर्फ बाप या दादा को मिलती है
जी।
सिर्फ किसको मिलती है? बाप और दादा को मिलती है। बाप और दादा के अलावा किसी को विलायत इजबार मिलती नहीं। जब किसी और को विलायत इजबार मिलती नहीं तो फिर ये चचा वाले मसले के अंदर वो कैसे इसको जायज कह सकते हैं? चचा का बेटा तो उनके नजदीक वली बन ही नहीं सकता सगीरा का। तो यहां इश्काल होता है साहिबे हिदाया ने जो मसला बयान किया इस पर। तो मुहशी हजरात ये एतराज जिक्र करते हैं और फिर जवाब देते हैं कि इस मसले का यही जवाब दिया जा सकता है कि शायद इस मसले में इमाम शाफी रहमतुल्लाह से दो रिवायतें हों। हमारे नजदीक भाई विलायत इजबार बाप और दादा को भी मिलता है, और अगर बाप और दादा ना हो तो और जो असबात हैं वो भी अवलिया बनेंगे सगीर या सगीरा के, उनको भी विलायत इजबार मिलेगी। और इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक विलायत इजबार सिर्फ बाप और दादा को मिलेगी और किसी को नहीं। लेकिन हो सकता है इमाम शाफी रहमतुल्लाह का इस मसले में एक और कौल हो और उसके मुताबिक और असबात जो हैं उनको भी विलायत इजबार मिलेगी। तो यूं कहा जाए कि यह मसला इमाम शाफी रहमतुल्लाह के दूसरे कौल पर मबनी है भाई, वरना एतराज होता है कि उनके नजदीक तो चचा का बेटा वली बन ही नहीं सकता। बात समझ में आ गई, हल हो गया। चलिए बस भाई, हादा हुवल मराम, अल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।